أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. إلهي أنتقني بالهدى والهمني التقوى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات على محمد وعلى محمد. آپ دل پر ازم سے، میرا اندازہ ہے آپ کو موضوع کے بارے میں مفصل بریفنگ تو ہوگی. استقبال ماہ محرم، الفاظ میں ممکن ہے جو آپ لوگوں تک پہنچے پبلسٹی کے اور جو میں زبان سے نکالوں تھوڑا سا فرق ہو، مفہوم وہی ہوگا. استقبال ماہ محرم اور ہماری ذمہ داریاں، یہ کیسا حساس، اہم اور دور تک نتیجہ دینے والا موضوع ہے کہ بسا اوقات ہمارے فقہا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جو ہمارے مرحوم علماء تھے اور جو موجودہ فقہ ہیں لائک آیت اللہ وحید خراسانی دامت اللہ العالی، ماہ محرم الحرام سے پہلے جو آخری درس خارج ہوتا ہے ان بزرگان کا، اس کے اندر بھی ان علماء کی کوشش ہوتی ہے کہ اس موضوع کی طرف اشارہ ضرور کیا جا سکے اور ایک مختصر سی بریفنگ دی جا سکے. البتہ یقینی سی بات ہے ان کے سامنے طلاب ہوتے ہیں، طلاب ہی وہ بڑے والے لیول والے، اور ہم جیسی آپ ویسی میں، جیسے ہم سب ایک ہی ساتھ. بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اس عزاداری کے قافلے کے اندر تین پلرز ہیں، اور تینوں میں سے کسی ایک کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ اہمیت سے، نہ ہی اس کی حساسیت سے، نہ ہی اس کا جو احساس ذمہ داری ہے، کم ہوگا تو عزاداری پر اثر انداز ہوگا، زیادہ ہوگا تو عزاداری پر اثر انداز ہوگا. چاہے وہ سنسری کے پیمانے سے آپ دیکھیں، بقول آگئے وحید خراسانی کے فرماتے ہیں، وہ چھوٹا سا کام جو عزاداری سید الشہداء کو سست کر دے، وہ ایسے ہی ہے گویا کمر خاتم الانبیاء کو توڑ دیا جائے. یعنی اتنی اہم، اتنی بڑی ذمہ داری ہے. اس قافلے کا پہلا پلر ہے بانیان مجلس، جسے ہمارے معاشرے میں منتظمین کہا جاتا ہے. اچھا، جب منتظم کا لفظ میں استعمال کر رہی ہوں، آپ کے ذہن میں ہوگا امام بارگاہوں کے ٹرسٹیز. ہمیشہ امام بارگاہوں کے ٹرسٹیز نہیں، ہم گھروں میں فرشے ادا نہیں بچھاتے. ہم گھروں میں فرشے ادا بچھاتے ہیں تو کیا دروازے پر کھڑے نہیں رہتے، آنے والوں کا استقبال نہیں کرتے، جانے والوں کو الوداع نہیں کہتے؟ آیت اللہ مرندی کا ایک جملہ میں نے رستگاران نامی کتاب سے لیا ہے، فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے اپنے پیر کو کشتی سید الشہداء کے اندر رکھو، کسی طریقے سے وابستہ رہو اس سن سے، خدمت گزارانے سید الشہداء سے. چاہے تمہیں دو کام ہی کیوں نہ کرنے پڑے، مہمان عزاداروں کے لیے چائے ڈالنا، آپ جانتے ہیں ایران عراق میں تھرو آؤٹ دا مجلس، البتہ ہم علماء نے اس چیز کو ڈسکریج بھی کیا ہے، تھرو آؤٹ دا مجلس چائے کا دور چلتا رہتا ہے، لوگ چائے پیتے رہتے ہیں، مولوی صاحب آتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. خیر، اور دوسرا کہا جو جوتے باہر پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جفت کرنا، ان کے جوڑے بنا کر رکھنا. یعنی کوئی بھی کام کرو، خدمت گزار ہو، سید الشہداء سے وابستہ رہو. اور پھر اس روایت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امام فرماتے ہیں ہم اہل بیت سفینہ تو نجات ہیں، ولیکن سفینہ تو حسین اسرعوں و اوسعوں، لیکن سید الشہداء کا سفینہ وسیع بھی ہے اور تیز کام بھی کرتے ہیں، زیادہ اس کی سرعت ہے. لیکن اب ہم اپنے پوائنٹ پڑھ رہے ہیں، میں اس سے زیادہ فضیلت سید الشہداء پر کچھ کہہ نہیں سکتی. پہلا پلر بانیان مجلس، چاہے وہ گھر کی مجلس ہو، چاہے وہ امام بارگاہ کی مجلس ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو ممبر پر کسی کو بٹھاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال मौजूदा एज की रिवायत है, हर वो दिरहम जो हुसैन की राह में खर्च किया जाता है, याद रखो उस दिरहम के बदले में खुदा जन्नत में एक महल देगा। बस ये वो लोग हैं जो अपना पैसा, अपना वक्त, अपना घर, अपनी एक पूरी सेटिंग होती है जिसे बहरहाल एडजस्ट करते हैं ताकि फर्श अदाए सैयद शहदा बिछाया जा सके। इन्हें हमारे मुआशरे में बानियाने मजलिस कहा जाता है। दूसरा तबका हाजरीन महफिल, मैं और आप अवाम जो जाते हैं और अपने चेहरों के तासुरात से पढ़ने वाले को बताते हैं कि वी आर गेटिंग बोर, बहुत लंबी हो गई मस्जिद। मैं कभी कभी अपने प्यारे सुनने वालों से कहती हूँ कि घड़ी की जरूरत नहीं रहती, चेहरों की घड़ियां बता देती हैं कि मस्जिद बड़ी लंबी हो गई है। ठीक है ना, ये वो मजमा है जो मसाइब में आपका साथ देता है, फजाइल में आपका साथ देता है, जिसके चेहरे के उतार चढ़ाव या आपका हौसला गिरा देते हैं या बढ़ा देते हैं। और इनकी अप्रिसिएशन, इनसे पढ़ने वाले की एक एक्सपेक्टेशन होती है। आप तवज्जो से सुने, करवटे बदलना, बेजारी का इजहार करना, जमाइयां लेना, चुंगम चबाना, पीछे बैठकर मोबाइल पर गेम्स खेलना, फेसबुक पे चले जाना और ये सोचना कि मस्जिद की नियाज में क्या मिलेगा, और ये घटता और बढ़ता है पहली और चौधरी के चांद की तरह, जो हमारे मुआशरे में राइज है। खाने की मस्जिद होती है तो एक अच्छी रौनक वाली मस्जिद होती है, और अगर आपने किसी को खाली एक जूस का पैकेट टिकाना है तो अंदाजा कर ले मस्जिद की रौनक कैसी होगी। ये दूसरा पिलर है हमारी आजादारी का, हाजरीन। अलबत्ता अगर हाजरीन जान ले, एक जुमला यहाँ पर शेख मूसा मुतहरी के मकसद से नकल करूँ। एक शख्स वाकई करबला के बाद आया इमाम सज्जाद की खिदमत में और आकर कहने का, मौला मैं वाकई करबला में मौजूद था लेकिन मैंने कोई तीर नहीं चलाया, कोई नेजा नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं साथ गया था उमर साथ के सिपाहियों के और वापस पलट कर आ गया। अब यहाँ इमाम का जुमला देखे, इमाम ने कहा तुमने लश्कर आदा की सियासी को बताया, अगर मैं एक अच्छी आजादार हूँ तो मैं रौनक के फर्श अदा बढ़ा रही हूँ, और अगर मैं अच्छी आजादार साबित नहीं हो रही तो मेरा जाना मरहम नहीं बना। मेरे बैठने का इंशाल्लाह ये दरवाजा ऐसा जहाँ से काफिर खाली हाथ नहीं जाते, तो फिर आने वाला चाहने वाला है, आजादार है, कैसे खाली हाथ चला जाए। आयतुल्ला सैयद मेहदी बहरुल उलूम के हवाले से एक जुमला नकल किया उनके शागिर्दों ने, ये जुमला खुद आगा ने नकल नहीं किया, का एक मतलब हमारे साथ आजादारी में शरीक थे। यकायक हमने देखा आगा की, देखिए उलमा के अंदर एक हैबत होती है अहले तकवा की। अदी ने मुआविया ने अबू सुफियान से ये जुमला कहा था, जब मुआविया ने कहा मेरे सामने अली की तौसीफ बयान करो, गोया मेरी आंखों के सामने मुजस्सम हो जाए, तो वहां पर एक सिफत को बयान किया, कहा उनकी जात के अंदर एक हैबत थी, एक अबूहत थी, एक रोब था, लेकिन ये वो रोब और दबदबा नहीं जो शाम के उबाश एक दूसरे के ऊपर जताते हैं, ये तकवे की हैबत होती है। अब आगे मेहदी बहरुल उलूम मर्जे वक्त है, एक हैबत है, एक दबदबा है, एक मकाम है का, लेकिन हमने देखा यकायक आगा ने अपने अमामे को उतार कर जिस तरह से आजादारों का एक खास बॉडी लैंग्वेज था, आप जानते हैं हर जगह एक सुन्नती आजादारी राइज है। पिछले साल अल्लाह ने मुझे पता नहीं किस मोमिन की दुआओं के नतीजे में, बेशक उसका फर्ज था किसी मोमिन की दुआ थी, मैं करबला गई तो मैंने जब देखा मैंने कहा हर अंदाज में आने वाला आजादार अपनी आजादारी करता है, हर शख्स चाहता है हुसैन के रजिस्टर में उसका नाम लिखा जाए। रिक्शे करते हुए लोग आते हैं, तेज तेज चलते हुए लोग आते हैं, सीने के बल रिंगते हुए लोग आते हैं, और 8 और 9 को तो मुसलसल जगह जगह लोग ट्रिमर्स और ब्लेड्स लेकर बैठे हैं। आप उनके पास बच्चे के साथ गुजरते हैं तो सवाल करेंगे आपने बच्चे को कमा मरवाना है, यहाँ से बाल उड़वाने, और फिर वो एक उनका, देखिए मैं कमा या इस तरह की किसी कंट्रोवर्शियल इशू में दाखिल ही नहीं होना चाहती, ना मौका है, ना मुनासिबत और ना मेरा मौजू, लेकिन आगा ने उस जगह जिस जगह पर मौजूद है, जिस शहर में ट्रेडिशनल आजादारी में हिस्सा लिया, तो ये जो चाहने वाले थे ना अतराफ वाले, ये आगे बढ़ के उन्होंने आगा से कहा आगा आपको क्या हो गया था एकदम आप जज्बात में आ गए, और आपने आप भूल ही गए थोड़ी देर के लिए कि आप इतने बड़े मर्जे हैं और आपको क्या अवामुन्नास की तरह। तो आगा का जुमला था खुदा गवाह है मैं कभी अवामुन्नास की तरह ना करता, अगर मैं अपनी आंखों से देख ना लेता मेरा जमाने का इमाम उन आजादारों के साथ मौजूद है। हाजरीन जान ले, मैं और आप शायद नहीं जानते किसके पहलू में सिद्दीक़ा कुबरा बैठी है। अगर मैं ये जान लूं और अगर मुझे शक पड़ जाए, कभी हम जाकिराए आप बैठी हैं, आप में से मेजोरिटी अहले मेंबर की है, कभी कभी हमारी मस्जिद में कोई बड़ा जाकिर आ जाए तो हमारी जुबान में एक लुकनत आ जाती है, कभी कभी हमारी मजलिसों को बहुत ज्यादा आलिम, बहरहाल देखिए फीमेल्स की मजलिस में मर्द नहीं आ सकता, लेकिन हमें पता चल जाए हमारी आवाज किसी बहुत बड़े आलिम तक जा रही है तो भी हम बहुत सोच समझ कर अपनी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल कर लेते हैं। कभी हम सैयदा के बारे में सोचे, किसके पहलुओं में बैठी हैं खुदा जानता है, किसके आंसुओं को अपने रुमाल में ले रही हैं खुदा जानता है। अगर नकवियान ईरान के बहुत अच्छे मारूफ खतीब हैं, उन्होंने इस जुमले को नकल किया एक अहले मेंबर के हवाले से, कहा अगर आने वाला जान ले वो क्या है और वो क्या देकर जा रहे इस फर्श अदा पर। आयतुल्लाह यसरबी के हवाले से नकल करते हैं, कहा एक दफा मैं तेहरान में अच्छा मजालिस के लिए गया, आगा ने मुझसे कहा कि रात को जब मजलिस खत्म होगी तो तुम्हारे साथ जो नौजवान होंगे उस मजलिस में उनको लेकर मेरे पास आना, मेरे घर आना। कब आगा की खदमत में पहुंचे, अब आगा की एक बेरूनी है, एक रिसेप्शन कह लें, अब बेरूनी की क्या तर्जुमा करूं मैं, एक रिसेप्शन है जहां पर हम आकर बैठे और आगा अंदर है। आगा ने मुझे कहा गिरोह दर गिरोह लड़कों को अंदर भेजते रहना। मैंने कहा एक गिरोह गया, दूसरा गया, तीसरा गिरोह गया, अंदर से रोने धोने की आवाजें आ रही। मैं छटपट आ गई, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, वापस क्यों नहीं आ रहे। कहा जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा आगा ने अपना कफन फैलाया हुआ है जमीन पर और मसाइब सैयद चौदह पड़ रहे हैं, और जैसे ही किसी हाजिर में से किसी की आंख में आंसू आते ना तो कहते रुमाल नहीं मेरा कफन इस्तेमाल करो। कहा जब ये महफिल बर्खास्त हो गई, मैं अगले दिन आया, मैंने आगा से कहा आगा आपने किनको जमा किया हुआ था, आप जानते हैं इनमें से बात सारे कुछ तलाक है। याद रखें अवाम के पास दो चीजें होनी चाहिए, मोमिनीन के पास एक इश्क एक अमल, एक इश्क एक अमल। अमल से इश्क की तरफ नहीं जाता, इश्क से अमल की तरफ जाते इंसान। मुमकिन हमारे सामने भी कोई ऐसा मजमा हो जहाँ बेपर्दा खवातीन है, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में एक ढूंढो हजार मिलती हैं, सारे कुछ सलाह हो। हमारा काम ये नहीं कि हम उनके अमल को निकालें और कहें ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, नहीं, मेरा काम ये कि उनके अंदर के इश्क को निकालूं, उसे निखार दूं। और मुहर्रम सफर से बढ़कर कोई मौका नहीं है, इंसान सैयदुल शुहदा के इश्क में हर काम करता है। कहा मैंने आगा से कहा इनमें से बहुत सारे तारीखुल सलात थे, बहुत सारे मुतजाहिर बिलफिस यानी खुल्ला खुल्ला गुनाह दाढ़ी मुंडे हैं मसलन। कहा आगा ने कहा उनका जो भी अमल है उनके साथ है, मुझे उनके इश्क से सरोकार था, ये जो आंसू थे ना ये इश्क के आंसू थे, और ये एक आंसू जहन्नुम की आग को ठंडा करने के लिए काफी है। बस हाजिर आने वाला जान ले वो क्या है हमारे लिए। हमारे उस्ताद बुजुर्गवार आगे नादिर सादिकी ने तीन या चार साल पहले मुहर्रम अल हराम की एक मस्जिद में एक वाक्य की तरफ इशारा किया था। मैं वाक्य पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वाक्य सुनाने के लिए तो खैर मैं बैठी भी नहीं हूँ, एक मुख्तसर सा इशारा करूंगी। कहा एक जगह एक बंदे खुदा, एक मौलाना, एक अहले मेंबर मस्जिद पढ़ने के लिए गए। जब मस्जिद पढ़ने के लिए गए तो मस्जिद के दौरान आपको पता है मस्जिद में हर तरह के लोग होते हैं, बहुत इन्हिमाक से सुनने वाले भी, मैंने कहा ना जैसे बेदार शक्ल बनाने वाले भी, कुछ लोग चुलबुले होते हैं बेचैनी खुट 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 लगी होती है। अच्छा अगर ये शख्स पढ़ने वाले के करीब बैठा तो ला मोहला उसकी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करेगा, उसके इर्तिकाज को तोड़ देगा। दो लड़के थे पूरी मजलिस में मेंबर के पास बैठ जाते थे, खुद बुद चलती रहती थी। हफ्ता अच्छे तासुआ आ गई, तासुआ का दिन आ गया, ये लोग रोज आते हैं मजलिस करते हैं मातम करते हैं गिरिया होता है, सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। 9 और 10 मुसलसल ये दो दिन आजादारी के सिलसिले जारी रहते हैं सुबह से रात तक। कहा ये लोग आए, आने के बाद ये मौलाना साहब इन दो से बड़े जिद थे कि ये दोनों लड़के जो ना मुसलसल शरारत कर दें, और जैसे दिल में एक मैल सा आ जाता है कि सारा मजमा तो अच्छा है यही दो जो है ना वो फसाद की जड़। मौलाना साहब ने ख्वाब में देखा कि सैयदुल शुहदा इसी इमाम बारगाह में दाखिल हुए हैं और उनके साथ उनके साथ अबुल फजल अब्बास हैं। मौला के हाथ में एक रजिस्टर्ड है, मौला के हाथ एक रजिस्टर्ड है और अजादारों के नाम लिखे जाते हैं। अच्छा तो तमीजदार अजादार उनका नाम तो हर जगह लिखा जाना चाहिए, लिखा जाता है, लेकिन बात यहाँ तक आ गई कि जो दो चुलबुले थे बेचारे होते हैं ऐसे बच्चे मजलिसों में कम नहीं होते ऐसे बच्चे। जैसे ही मौला ने कहा इनके नाम लिखो अब्बास, कहा मौला अब मेरे अल्फाज में अबुल फजल अब्बास के जुमले का मफहूम, कहा मौला इन्होंने तो पूरी मजलिस में मसलन किया क्या है सिवाय मौलाना को भी सताते रहे हैं और दूसरे लोग भी थोड़ा इरिटेट होते रहे हैं। मौला ने कहा तुम्हें पता है जब तासुआ वाले दिन सारे मातमी निकल गए। अब देखिए कुछ लोग अजादारी में अजादारी के लिए नहीं आते, वो टाइम पास होता है, एक एंटरटेनमेंट होती है, चलो बाहर निकलते हैं थोड़ी तफरी हो जाएगी, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाएगा। ऐसे मोमिनीन भी हैं हमारे दरमियान, कहा ये निकलने लगे, इन्होंने इमाम बार का में देखा कंदान पड़े हैं शुगर पॉट, शुगर क्यूब्स के, जो शुगर पॉट कह लें आसान जुबान में। कहा ये लोग निकलने लगे, इनमें से एक ने कहा यार ये मातमी वापस आएंगे थके हुए, और थकन में बाजू का इंसान को सामने बड़ी चीज नजर नहीं आती, ऐसा ना हो कि सेजादार का पांव इन कंदानों से टकराए, इमाम बार का भी गंदी हो जाए, आने वाले को भी ठोकर लग जाए। और इसने कंदान उठा दिया और किचन में रख दिया। कहा तुम वो चुलबुलापन देखते हो, तुमने वो खिदमत नहीं देखी अजादारों की, और शायद दुनिया में कोई कौम अजादारों की ऐसी खिदमत ना कर सके। आप इराकियों को देखें, मुझे किसी रहने वाले मोमिन ने बताया था, हम लोग कहीं पहुंचे, हम चार पांच लड़के थे नजफ से, कहा इतनी शदीद सर्दी, इतनी शदीद ततन, कहा हम जब कहीं पहुंचे ना तो एक इराकी जिसने हमें रोक लिया रास्ते में, लोग रोक लेते हैं जो मच्छी वाले थे, जो बाय वॉक जा रहे थे करबला, बसरा से 17 दिन में पहुंचते लोग, नजर से 3 दिन में पहुंचते हैं लोग। कहा जैसे ही हम लोग बैठ गए, वो इराकी साहब खाना आया और आके मुझे कहने का पैर आगे करो, मैंने पैर आगे किया, उसने मेरे मोजे उतार दिए। मैं सोच भी पड़ गई, हमें अगर बच्चे आपके दरमियान बच्चों वाली माए बैठी है, बच्चा स्कूल जाके के मेरे मोजे उतार दे, बड़ा बच्चा 14-15 साल का, तो शायद हमारा दिल चाहेगा हम उसको चार सुनाए कि अपने मोजे उतरते नहीं है। कहा यहाँ तक खिदमत करते हैं अजादारों की, शायद से इस शौदा की फहरिस्त में, शायद उस रजिस्टर्ड में कहीं मेरा नाम हाजरीन, दूसरा पिलर अजादारी का, अवामुन नास जो फर्शी अजा की स्याही बढ़ाते हैं, जिनका आकर बैठना कल में नाजरीन सिद्दीक कुबरा का मरहम बन जाकर, और तीसरी और सबसे मुनफरिद जिम्मेदारी। एक बार याद रखिए, जब आप एक चीज को नोट डाउन करना तो एक ब्रैकेट जरूर खोलिएगा, इसे हम और आप खतीब कहते हैं, पहले मेंबर जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। ऐसे ही नहीं है, मेरे सामने आज सुबह नफसुल महमूम की 40 रिवायतें थी, वो मुहद्दिस का गौर था, उन्होंने 40 को पता नहीं कितनी कई 100 रिवायतों में से उठाया होगा, लेकिन मैंने सिर्फ एक रिवायत, और रिवायत भी पूरी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मुझे टू दी पॉइंट जिम्मेदारियों की तरफ इशारा करना है, मैं रिवायत पूरी नहीं पढ़ूंगी, रिवायत का एक टुकड़ा, रिवायत है इमाम सादिक की, इमाम फरमाते हैं नफसुल महमूम मोहम्मद अज्जल फरजा नफसुल महमूम फी गमना तस्बी, आह जो भरी जाती है, इंसान कभी वाकई सोचे, फिर सैयदुल शोहदा के बाद सोचने के बाद फिर कुछ मोहलत नहीं रहती, आप सोचते हैं हर मुसीबत दूसरी मुसीबत से बड़ी है, इनका मकाम कितना है। रिवायत कहती है बका जो रोए हुसैन पर, और अबका रुलाए हुसैन पर, खुदा उसके जिस्म पर आशिश जहन्नुम को हराम कर देता है, लेकिन एक बात याद रखें अल्लाह के अपने कानून है और खुदा अपने कवानीन के खिलाफ वर्जी नहीं करता। उसने इन कवानीन के अंदर एक कानून रखा है नामा ये तकबल अल्लाह मिनल मुत्तकीन, देखो हम साहिबान तकवा का अमल कबूल करेंगे। मेरा बुनियादी तौर पर फोकस इस तीसरे गिरोह की तरफ, खतीब की जिम्मेदारी, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत, फर्क नहीं पड़ता, हत्ता चाहे वो एक बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, शेख मूसा मुतहरी ने सुखों में बड़ी प्यारी बात कही, कहा करबला ने हमारे मकसद को एक चीज बहुत कसरत से दी है और वो खिताबत, हमारे दरमियान बड़े बेहतरीन खतीब गुजरे हैं और बड़े बड़े बेहतरीन ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने मेंबर की रौनक बढ़ाई है। किसी जिसका भी जुमला है, मुझे नहीं मालूम जुमला किसका है, लेकिन बहुत ही प्यारा जुमला है, सदियां गुजर गई हुसैनियत लिखते लिखते, लिखने वाले मर गए हुसैन आज भी वाकई है। ये वो जिक्र है जिसने करने वालों को, मैंने आज तक रशीद तुराबी साहब को देखा नहीं है लेकिन उनका नाम है, अलावा किफायत हुसैन साहब नहीं देखा नाम है, अजहर हसन जैदी आलल्लाहु मकामहु नहीं देखा नाम है, मरहूम नक्कन नहीं देखा नाम है, किस चीज ने नाम को बका दी, ये जिक्र सैयदुल शोहदा था। याद रखें ये जिक्र इतना मीठा है, करने वाला खुद ही अच्छा लगता है, करने वाला खुलूस है। करने वाला खुलूस से करे, वो जानता नहीं है उसे सैयदुल शोहदा क्या देंगे। अब यहाँ पर बाकायदा तौर पर अगर उर्दू लिटरेचर में देखना चाहें, मेरी नजर से सिर्फ एक किताब गुजरी है, मेरे पास बाकी जितनी किताबों का कलेक्शन था या वो फारसी की थी या वो अरबी की थी, और वो नफीस तरीन किताब है मुहद्दिस नूरी की, आदाब अहले मेंबर, जिसमें मुहद्दिस जलीलुल कद्र ने पहले मेंबर की सिफात और उनकी तरफ से की जाने वाली कोताहियों की तरफ इशारा किया। जो कोताहियां हमारी हमारी सिन से होती हैं, लोग मेंबर पर आकर जो बोलकर चले जाते हैं, हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, हमारे यहाँ कोई पैमाना नहीं है, हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं कभी सोचूं, हमारे सामने दो बड़ी चीजें थी, एक मेंबर एक मेहराब। मेहराब का तकद्दुस बाकी है। अगर आप किसी दाढ़ी मुंडे को मस्जिद की मेहराब में खड़ा कर दें, आप ही के घरों के मर्द कितने परसेंट पीछे नमाज पढ़ने जाएंगे? अंदाजा जाएंगे, यस और नो? नहीं, ठीक है ना। लेकिन दाढ़ी मुंडे मेंबर पे बैठते हैं, कोई उन्हें रोकता है? शहीद मुर्तजा मुदरी ने बड़ा प्यारा जुमला तय कहा, मेरे बाप का बनाया हुआ कानून टूटता है तो मेरा दिल पिघलता है, मेरे खुदा का बनाया हुआ कानून टूटता है कुछ नहीं होता। यानी अगर एक ये मजलिस, मैंने अपने हमारे सोजर बाजार में एक दफा मिसाल दी थी, मैंने कहा मैं 8 मुहर्रम की मजलिस पढ़ने, खुदा ना करे कि मैं खुदा ना खास ऐसा कभी हमाकत करूं, लेकिन मैं ये मिसाल आप पर देकर तो बोल भी नहीं सकती ना, अपने ही आपको कह सकती हूँ। लेकिन ये मिसाल मैंने बनाई, मैंने कहा मैं 8 मुहर्रम की मजलिस सी ग्रीन सूट में पहनने चली जाऊँ पढ़ने, आपके ख्याल से अगर मैं उस दरवाजे से एंटर होकर यहाँ तक पहुँच जाता हूँ, कितनी मोमिनात मुझे रास्ते में रोक के कहेंगी जहरा आपकी ड्रेसिंग मुनासिब नहीं है? मेजोरिटी कह देगी जहरा ये क्या है, ये मुहर्रम की 8 मुहर्रम की मस्जिद आप ये सी ग्रीन कलर का सूट पहन के फिर रही। लेकिन अगर नंगे पांव जाकिरा मेंबर तक जाती है, कितने लोग उसे टोकते हैं? मजलूमियत है पस्ते मेंबर की। मेहराब के मुकाबले में मामले में तकद्दुस बाकी है, मेंबर के मामले में हमने तकद्दुस छोड़ दिया, हमने हर कसो नकस को बिठा दिया, नहीं देखा इसके पास क्या है। अल्लामा मोहम्मद तकी फलसफी की एक बहुत ही प्यारी किताब है, अबू ज़र गफ्फारी साहब ने इसका उर्दू में तर्जुमा किया है, तर्जुमे का नाम नहीं मुझे पता, लेकिन फारसी किताब का नाम है कूदक। पहले वॉल्यूम में एक रिवायत को नकल किया गया है, फल जंजुरिल इंसानो इला ताआमे ही, कुरान की आयत है, इंसान को देखना चाहिए वो क्या खा रहा है। और इस आयत की तफसीर करते हुए अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब लोग रात को खाना खाते हैं, चराग जला लेते हैं, क्यों? ताकि देखें क्या खा रहे हैं। ओ मैं आगा मौला से को मौला, इस लोड शेडिंग के जमाने में बहुत सारे मोमिनीन कैंडल लाइट डिनर करते हैं, जिनके यहाँ यूपीएस नहीं है, जिनके यहाँ जनरेटर नहीं है, लेकिन कैंडल लाइट कैंडल जलाई जाती है। कैंडल जलाने का मकसद क्या, हम देखें हम क्या खा रहे हैं। मौला ने कहा मुझे ताज्जुब है, जब इल्म हासिल करते हैं चराग अक्ल को नूर ईमान के साथ रोशन क्यों नहीं करते? देखे मालूमात कहाँ से ले रहे हैं अपनी? हर छपी हुई किताब मुसव्विदा किताब हो सकती है, मुस्तनद नहीं हो सकती। हमारे पास मक्तल की नफीस तरीन किताबें थी, उसके बावजूद हमने हर कसो नाकस की लिखी हुई किताब को उठाया और उसमें से मसाइब और फजाइल पढ़ना शुरू कर दिए। मकाम मौजम रहबरी ने एक मकाम पर आज से शायद 18 साल पहले अहले मिंबर में तकरीर करते हुए, 1418 साल नहीं 1405 हिजरी का मुहर्रम और इस्तकबाल माह मुहर्रम की तकरीर के दो जुमले आगा फरमाते हैं कि मिंबर जो एक बहुत बड़ा मुहकम जरिया था लोगों के अंदर आगाही शऊर अवेयरनेस बेदार करने का, हमने उस मिंबर से क्या किया? हमने पहला काम तो ये किया कि आइमा अथार को एक माफ़ूक़े बशरियत शख्सियात साबित की, ऐसी शख्सियत जिस जैसा कोई हो ही नहीं सकता, ये हक है। और आठवें इमाम का जुमला भी है, ला युकासनो बिना अहदुन, हमारे साथ किसी को मुकायसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उन जैसा बनने की कोशिश की जा सकती है, एक ऐसी शख्सियत। अच्छा, उस शख्सियत के अंदर भी बहुत ही प्यारा दर्द दिल है। इन्होंने एक जगह पर नोहे लिखने वालों को कमेंट दिए, कहा बहुत बड़ा दर्द दिल है, हम नोहे जो पढ़ते हैं उसके अंदर कभी अब्बास की बुलंद कामती को ले आते हैं। बुलंद कामती खुदादाद सलाहियत है। मैं और आप अबुल फजल अब्बास को याद करते हैं तो किन अल्फाज में याद करते हैं? अगर वहीर खुरासानी फरमाते हैं कुछ अल्फाज हुए जिनमें मैं और आप याद करते हैं, कुछ अल्फाज हुए जिनमें इमाम सादिक ने याद किया, कौन सा लफ्ज बेहतर होगा? हम कहते हैं अब्बास कद बुलंद थे। अब ईरानियों के लोहर मर्चियों को देख लें, आंखें ऐसी थी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी कमी नहीं अदब में शायरों के, आंखें ऐसी थी, रुखसार ऐसे थे, युद्ध आलहू खबर अबनी हाशिम, इस कदर वजाहत थी। शेख मुसम्मदी सुखन में एक तकरीर में कहते हैं, हमने ऐसी रिवायतें सुनी है असातिज़ा से, उलमा से, किताबों में देखी है, जिसे बयान किया जाता है सैयद शोहरा देखते थे वरन नाज़रीन को तो खुश हुआ करते थे। 23 साल का फासला सिन्नी है, अरबों में ये बाप बेटे का फासला सिन्नी बनता है। अजीजा ने मन लेकिन क्या अब्बास की शख्सियत सिर्फ इसी चीज के अंदर महसूस थी? जब इमाम सादिक याद करते हैं तो किस तरह से याद करते हैं? फरमाते हैं काना अम्माना नाफिजल बसीरा व काना मिन फुकहाए बनी हाशिम। उसकी फकाहत का तस्किरा तो कहीं हुआ ही नहीं। नाफिजुल बसीरा आंखों से कहा, ये वो खसूसियत है जिसमें अमीरुल मोमिनीन और अबुल फजल अब्बास में शबाहत है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया लो कुछ खिताब मेरी आंखों से पर्दे हटा दे, मजदत तो यकीन है मेरे यकीन में एक रत्ती का इजाफा नहीं होगा। कहा ये सिफत वो जो अमीरुल मोमिनीन में थी अमीरुल मोमिनीन के फर्जंद में भी है। उस तरह से याद करो जिस तरह से आयमा ने याद किया। लेकिन हमारे यहाँ वो मेंबर जो शऊर जो अवेयरनेस जो अमरो बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, सबसे बड़ा इशू हमारी मजलिसों में से ये आखिरी उनसर निकल गया। खतीब की हत्तुल इम्कान कोशिश क्या होती है? साहिब खाना राज बानी मजलिस राजी हो जाए, अब चाहे माँ बार के ट्रस्टीज हों, चेयर लेडीज हों, चेयर अंकल्स हों, जो अभी हों, घर वाला राजी हो जाए। क्यों? क्योंकि फिर वो नेक्स्ट डे भी आप ही को बुलाएगा। और साहिब खाना सिर्फ अवाम का चेहरा देख रहा होता है। लोग जाते वक्त कह रहे कहाँ से गौरे नायाब ढूंढा, इस कदर शानदार मजलिस पड़ी, अल्लाह सारी थकन उतर गई। यही से अंदाजा लगा ले हमारा क्राइटेरिया क्या है। अमरूद जाने तक जवाबी क्या करते थे? मजलिसें बेचते हैं लुआबे दहन के बदले में। मीना के मकाम पर मरूम शाना तजवादी की एक तकरीर के जुमले हैं, कहा किसी ने मुझे कहा मौलाना साहब कैसे कोई लुआबे दहन के बदले में मजलिस, फूक के बदले में मजलिस बेचेगा? कहा जब हम बहुत अच्छी मजलिस पढ़ते हैं तो लोग हाथ देते हैं, मेरे हाथ पर क्या रह गया? ये कीमत थी मेरी मजलिस की। है हम बरादरा ने यूसुफ से भी गए गुजरे हो गए, उन्होंने यूसुफ को बेटा था, उन भाइयों ने बहुत अच्छी कीमत में अजीज मिस्र ने कहा था यूसुफ को एक तराजू के पलड़े में रखो दूसरे में सोना रखो, मैं यूसुफ को ले जाऊंगा। ये भाई होके बेमार्फत से वो गैर होकर मार्फत रखता था। हम सैयद 14 को किस चीज के बदले दे रहे? घर वाला बानी मजलिस जो भी है बानी मजलिस फर्ज नहीं पड़ता, बानी मजलिस खुश हो जाए, अवाम उन्नास खुश हो जाए या हमारा खुदा खुश हो जाए, पहले तो हम ये तय करें ना। अब यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में कुछ पॉइंट सरसरी था। पहली चीज वक्त का खास ख्याल रखें। अमीरुल मोमिनीन का एक फरमान है खुतबे का फितना उसकी तवालत है। एक बार याद रखें इंसानी जहन एक लिमिट तक इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसके बाद थकन गालिब आ जाती है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जंक मेल की तरह रिसाइकल में जाना शुरू हो जाती है। कोशिश करें वक्त को अपने साथ, जरूरी नहीं है कि आप डेढ़ घंटा पढ़ें, आप सवा घंटा पढ़ें। खैर उर्दू स्पीकिंग में तो 30-30 मिनट की मजलिसें भी होती हैं, वहां मजलिस से ज्यादा फोकस सोच खाने पर होता है। लेकिन आप जो पढ़ रही हैं उसके अंदर दे क्या रही हैं, उसका वक्त मुफीद कितना था आपका? मौला के इस जुमले को जहन में रखें कि खुतने का फितना उसकी तवालत है। दूसरी चीज इखलास। मुहद्दिस नूरी ने भी लोगों पर जान आदाब अहले मेंबर में कहा कि रिसाइटर की बुनियादी शर्त उसका खुलूस है। जितना ज्यादा खुलूस होगा याद रखें उतना ही उसका काम नतीजा देगा। अब यहाँ पर मैंने आ गए मुश्तहिदे तेरानी की किताब से एक छोटा सा वाकया आपकी खिदमत में बयान करूँ। आदाब उत्तलाब में नकल करते हैं एक शख्स ने ख्वाब में सैयद 14 को देखा, जिन्होंने अबुल फजल अब्बास से कहा कि मेरे मजलिस से पढ़ने वालों की लिस्ट को मेरे लिए लेकर आओ। इस शख्स ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि उस लिस्ट में कुछ मजलिस से पढ़ने वाले हैं, माशरे में मौजूद हैं, उनके नाम पर खत लगा है, लाइन लगी हुई है, और कुछ के नाम ऐसे हैं जिनका जिन्होंने कभी मजलिस पढ़ी ही नहीं। का इस लिस्ट में बहुत सरे फेरिस जो नाम थे, उनमें एक नाम था सैयद अब्दुल हादी शिराजी आल अल्लाह को मकामाओं का। कहा ये एक्सलन मजलिस पढ़ने वाले थे ही नहीं, ये अहले मेंबर नहीं थे, ये मर्जे थे, दर्ज खारिज देते थे, उसूल और फिक्र पढ़ाते थे। कहा मेरे से रहा नहीं गया, जब मैं ख्वाब से उठा, जब मेरी आंख खुली, मैं अगले दिन आगा की खिदमत में गया और मैंने आगा की खिदमत में जाकर ऐसे अपना ख्वाब बयान किया। मैंने कहा आगा आपने तो कभी मस्जिद पढ़ी नहीं, हमने कभी नजर में आपकी मस्जिद नहीं सुनी, लेकिन जो लिस्ट सैयद शौरा के पास थी उस लिस्ट में आपका नाम था। तो आगा ने कहा कि एक दफा मैं दर्ज की तैयारी के लिए मैंने आपकी खिदमत में किया ना कि फुकहा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इन आखिरी अय्याम के दरसों में फजीलत आजादारी सैयद शौरा को बयान करते हैं। कहा मैं लिस्ट बना रहा था, रिवायतों को जमा कर रहा था, मैंने सोचा कि इतनी फजीलत है हुसैन पर रुलाने की, तो मैं इस फजीलत से क्यों महरूम हूँ? अच्छा, अगर ये फजीलत मैं जान रही हूँ, मुमकिन है मेरे अंदर मस्जिद पढ़ने का टैलेंट भी ना हो। कोई बेचारा ऐसा पढ़ने वाला भी होता है, वो एक दफा मस्जिद पढ़ता है, दोबारा कोई उससे मस्जिद पढ़वाने की जरूरत ही नहीं करता। हैं ऐसे लोग, ऐसे अहले इल्म है हमारे दरमियान। कहा, मैंने सोचा कोई जरूरी नहीं है कि मैं जाऊं और जाकर लोगों के घर में मस्जिद पढ़ूं। मैंने उन रिवायतों को पढ़ने के बाद अपने आप के साथ अहद किया, मैं शबे जुमा अपनी बेगम बच्चों को बिठाता हूँ, एक छोटी सी मक्तल में से तीन या चार जुमले पढ़ता हूँ और वो बच्चे भी चले जाते हैं, बेगम भी चली जाती है, मैं भी फारिग हो जाता हूँ। कहा, वो मस्जिद जो आप घर में अपनी बीवी और बच्चों में पढ़ते हैं, सैयद शोहरा की फहरिस्त में आपका नाम है, और लेकिन बाद वो जो अहले मेंबर हैं उनके नाम पर कॉर्स लग चुका है, इखलास मयार है और कोई चीज मयार नहीं है। आप जितना खुलूस देंगे, आप याद रखें, आप इखलास से एक अमल को छुपाने की कोशिश करें, खुदा उस अमल को कहां तक पहुंचा देगा। दुनिया जाने ना जाने, अल्लाह तो जानता है कि कौन किस खुलूस से। आगे सैयद रश्ती का एक वाकया मेरे बहुत अच्छा, पहले मैंने किसी किताब में पढ़ा था, जरिए मुताहर तक पहुंचे इमाम की, सैयद चौधरी की, कहने लगा, मौला इंसान जिस भी इदारे के साथ काम करता है दुनिया में, अगर आप किसी इदारे के साथ वाबस्ता हैं, आप काम करते हैं, जब आप रिटायर होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिलता है, पेंशन मिलती है आपको, कोई ग्रेजुएटी के और पता नहीं कौन कौन से फंड होते हैं जो आपको मिलते हैं। बाद इदारे आपको मेडिकल देते हैं, बड़ी पोस्टों पर पेट्रोल मिलता है, बिजली का बिल मिलता है, बड़ा कुछ मिलता है। मौला, मेरी एक ख्वाहिश है आपसे, जरिए शीश गोजा के पास, सैयद शोहरा के कब्र मुतार के पास एक छोटी सी फरमाइश मैंने मौला से की। मैंने मौला से कहा, मौला मेरा दिल चाहता है बुढ़ापे में मैं किसी और के दस्तरखान पर नहीं, आपके दस्तरखान पर बैठूं, मुझे किसी बच्चे के आगे, किसी के आगे, और इंसान की कवाएं बदली हुई हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कहा, उसके बाद मुझे बहुत साल गुजर गए, मैं वो बात भूल भाल गया, मेरे पास रस्त में एक चाय का बाग था, मैंने उसे बेचने का इरादा किया, मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया कि आयतुल्ला गिलानी ने तुम्हें बुलाया। कहा, मैं उनकी खिदमत में पहुंचा, बिस्तर में थे, सलाम दुआ अहवाल पुरसी के बाद मुझसे कहने के, मगर बादशाहों के अस्थियों को बेचा जाता है, उस वक्त शाह ईरान की हुकूमत थी। मैंने कहा, आगा मेरा शाह से कोई सरोकार नहीं है। कहा, ये शाह की बात नहीं कर रहा, मैं बादशाह असली की बात कर रहा हूँ। कहा, किस पति की बात करें, किस बादशाह की बात करें? कहा, तुम्हें याद है आज से कई साल पहले तुमने सैयद शोहरा की कब्र मुतहर के पास खड़े होकर एक दुआ की थी, कहा था मौला मुझे बुढ़ापे में अपने दस्तरखान पर बिठाइएगा। ये सैयद शोहरा का हदिया था, ये चाय का बाग, बुढ़ापे में तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। कहा, मैं कौलनामा लिख चुका था, एग्रीमेंट साइन हो चुका था, लेकिन मैंने सामने वाले से एक्सक्यूज कर लिया। खुलूस से काम करें, फिर सैयद शोहरा जाने, सैयद शोहरा ये मिसाल तो बड़ी नामुनासिब है, लेकिन मैं दिए बगैर रह नहीं सकती। ये मिसाल मैंने पिछले दिनों किसी और मदरसे में भी दी थी। मैं होता है कभी कभी ये मासियां जो घरों में आती, मैंने एक अपनी मासी से एक इबरत ली जो शायद मुझे कभी किसी उस्ताद की तकरीर से नहीं मिली, कभी किसी किताब से नहीं मिली, कभी किसी बहुत आलिम फाजिल से नहीं मिली। वो आती है कभी पड़ोस में काम करने, कभी ऐसा कोई एक्स्ट्रा काम हुआ चलो करवा दिया। एक दफा मैंने उससे कोई एक्स्ट्रा काम करवाया, मेरे ड्राइंग रूम में मेहमान बैठे तो इशारा करके चली गई, काफी दिन नजर नहीं आई, एक दिन नजर आई। मैंने उसको कहा, अरे भाई तुमने पैसे नहीं लिए उस दिन मैंने तुमसे काम करवाया था? उस मासी ने जो जुमला कहा ना, पूरा दिन उस जुमले ने मुझे उसने रखा, एक कैफियत में रखा। कहने की मेरी सास ने मुझसे कहा तुम्हें पैसे नहीं दिए उसने, तो मैंने कहा बाजी किसी का हक नहीं मारती, मैंने कहा उसे बाजी पे भरोसा है, मैं एक गुनाहगार फकीर औरत उस काम करने वाली का हक नहीं मारूंगी, आपके ख्याल में इमाम हुसैन हक मार देंगे? इमाम हुसैन हक मार देंगे? मुहर्रम की पहली कोई छोटा सा एग्रीमेंट तो हम भी साइन कर सकते। जैसे ये जुमला मैं 8 रबीउल अव्वल की मस्जिदों में कहा करती हूँ, मौला जो काम करता है उसकी आंखें बोलती हैं, तो जुबान से शायद मुमकिन आपके पास आके खड़ा हो कुछ ना करें, लेकिन उसकी आंखें बोलती हैं। मौला हाजतें हैं, आप इखलास से काम तो करें, मैं इखलास से काम तो करूं, मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं रहेगी कभी, सही तो शोभा बेनियाज कर देंगे। हुसैन है ना, नजर से अशरफ ने एक तालिबिन पर एक वक्त ऐसा आया, ईरान इराक के मुबासिलाती राबते जब कट गए, एक दिन दो दिन कितने दिन इंसान धूप बर्दाश्त करेगा, एक लम्हा ऐसा आया कि बस अब लगा वाजिबात की अदायगी मुमकिन नहीं है। हुजरे से अपने आप को घसीटते हुए हरम मुतहर तक पहुंचाया, जरी के करीब पहुंचे ना, पिराहन को कमीज को पेट से हटा दिया, जरी के साथ पेट लगाकर कहा मौला मैं किसी से नहीं कह सकता, मेरी आबरू है, आपसे कह सकता हूँ, आप इस भूख के एहसास को बिठा, आप इस भूख के एहसास को बिठा। चार पांच दिन गुजरे, उस वक्त के जो मर्जे आले कदर थे मदरसे के साथीदा के साथ आए इस तालिबिन से आके शिकवा करने लगे कि हमें अब पता चला है तुम इतने अरसे से मदरसे में थे, तुमने हमें बताया नहीं। कहा जो आपसे बड़ा था उससे कह दिया, आपको कहने की जरूरत नहीं रही। हम मजलिस के लिए अगर किसी घर के सरबरा को फोन कर दें तो बच्चों से नहीं कहते हमारे यहाँ मजलिस है, बड़े कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। इखलास इखलास है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते पर चलेगा उसके लिए रास्ते खुद ब खुद खोल देंगे। इखलास है इखलास कैसा आ गए सैयद अब्दुल्लाह फातिमिया ने एक मिसाल दी है रोजा हाई उस्ताद ने। किताबों के नाम छोड़ दें, मेरे पास मेजोरिटी सिवाय दो किताबों के शायद ही कोई किताब उर्दू में निकले। आगा कहते हैं आगा जाफरी चुस्तरी का नकल करते हैं जिनकी नफीस किताब मुस्तबे अहले बैत रिजविया से छपी हुई है खसाइसे हुसैनिया। कहते हैं सैयद शोहदा के बारे में बहुत सारी किताबें सैकड़ों किताबें लिखी गई, लेकिन अगर सैयद शोहदा के बोध मानवी पर कोई किताब लिखी गई है तो वो खसाइसे हुसैनिया। आगे फातिमिया हरम इमाम रजा के खतीब हैं, आगे फातिमिया हरम हजरत मासूमा के खतीब हैं, आगे फातिमा बड़ी पाए की चीज़ हैं। कहते हैं ये सैयद शोहदा का दरवाज़ा है, अगर आप सैयद शोहदा तक पहुंचना चाहते हैं आपको आगे जाफर चुस्तरी की दी हुई मालूम से गुजरना पड़ेगा। कहते हैं मैंने इनका रिसाला भी देखा है, तौजीह भी छपी हुई देखी है। कहा कि एक जमाने में जब ये पढ़ा करते थे मजलिसें तो इनका हाफिजा इतना कवि नहीं था, ये हमेशा हाथ में ऐसे किताब रख के पढ़ा करते थे। एक दिन मस्जिद पढ़ के आए, अच्छा मस्जिद पढ़ते अगर आपके हाथ में किताब हो तो बॉडी लैंग्वेज कुछ डिस्टर्ब होती है। कहा आए आकर रात को उन्होंने इमाम साहब से तवस्सुल किया, कहा मौला कब तक मेरे हाथ में सफा रहे, लोग भी तो पढ़ते हैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा, हिंदुस्तान में पढ़ने वाले तीन तीन चार चार घंटे पढ़ा करते थे बगैर किताबों के बगैर सफों के, मेरा हाफिज ऐसा है। तवस्सुल करते करते सो गए, रात को ख्वाब में देखा असरे आशूर है, सैयद शोहदा के खेमे हैं, ये इमाम की खिदमत में दाखिल होते हैं मेहमान की हैसियत से। कहा इमाम ने हबीब को आवाज़ दी, हबीब आओ हमारा मेहमान आया है। कहा हबीब आए, इमाम ने हबीब से कहा हबीब मेहमान आया है, खेमों में पजीराए के लिए पानी नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो असबाब असबाब सफर है उसमें आटा और घी है, जो लफ्ज आगा फातिमिया ने नकल किया ऐसे ही एडिटेड, उनसे कुछ बनाकर लाओ। कहा थोड़ी देर में देखा हबीब कुछ बनाकर लाए, अब आटे और घी से क्या बनाए ये आगा जाफर चुस्तरी ने भी नकल नहीं किया, आगा फातिमिया ने भी नकल नहीं किया। कहा लाकर इमाम जैन ने मेरी खिदमत में मुझे प्रेजेंट किया एज अ मेहमान। कहा मैंने उससे एक थोड़ा सा उठाकर मुंह पे रख लिया, इमाम का हाथ तो नहीं रख किया जा सकता। कहा वो दिन और आज का दिन सफे की जरूरत नहीं रही, बस इखलास एक इखलास, दूसरी शर्त। तीसरी इल्म, क्या कहूँ मकातिल, हमारे पास बेहतरीन किताबें हैं मकतल की अजीजा ने मन, सैयद इब्ने ताऊ का मकतल उर्दू में मौजूद है, शहीद मुर्तजा मुतारी का मकतल उर्दू में मौजूद है, हमारे अपने पाकिस्तान हिंदुस्तान के नबीस ऐसे अहले मेंबर जो अहले इल्म भी थे। देखिए अहले मेंबर एक अलग सिंफ है, अहले इल्म एक अलग सिंफ है, उनकी ना एक आलिम पाए एक आलिम हो, मिर्जा जवाद तबरेजी आलल्लाह मकाम हो मर्जे तकलीफ गुजरे, एक ट्राई एंगल है उलमा के दरमियान मारूफ थी, एक कॉर्नर पे आयतुल्लाह सिसानी, दूसरे पे आ गए खुरासानी, तीसरे पे आ गए तबरेजी, अहले मेंबर थे नहीं। उसके बरस आगा वहीद हैं, आगा वहीद का मेंबर इतना आगे वहीद खुरासानी का मेंबर इतना दाग है गल्फ में, मैंने सुना एक जमाने में मेंबर की जगह बिका करती थी, मेंबर नहीं बिकता था, नीचे आने वाले लोग आगे एक जगह ले लेता था, गरीब आदमी अमीर आदमी आकर उसको पैसे देता था और खुद उस कुर्सी पर बैठता था, यानी इतना शानदार मेंबर था। इल्म मकातिल मकतल की किताबें तारीख तफसीर अच्छी किताब पढ़ने की आदत डाले, कि हर लिखी हुई चीज को आप किताब नहीं कह सकते। बहुत प्यारे जुमले उन्होंने बसरी से इमाम सादिक ने कहे थे, लैसल इल्म कसरत तालीम व तालुम, ये बहुत पढ़ने पढ़ाने का नाम नहीं है, बलुआ नूर उन उन्वान, ये नूर है, यख्लफहुल्लाहु फी क़ल्बि मन यशाउ, खुदा जिसके दिल में चाहता है करार देता है, खुदा से मांगे रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐसे कैसे परवरदिगार तूने सबको दिया, जिनको जो अहलेंजों ने दिया उनके सदक़े में मुझे भी इनायत कर, मालूमात जिस मौजू पर बोलना चाहती है इहाता करो उसका, लूली लंगड़ी कुर्सी अच्छी लगती है आपको, आपको अगर मैं एक कुर्सी ऐसी दूँ जिसका एक पाया ना हो अच्छी भी ना हो, आपको अच्छी लगेगी, मजलिसें हमारी ऐसी हैं, ऐसा इल्म अच्छा स्टैंडर्ड का आप जिस मौजू पे बोलने लगी हैं, आपका इहाता हो उस मौजू पर कम अज कम, नाकिस मालूमात देकर। फिर आपको चौथा पॉइंट, ये सबसे अहम, आपको ये मालूम होना चाहिए आप किस मजमे में बोल रही। आपको पता है आज मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था, बड़े अरसे बाद मैं उसमें थी कि आप अहले इल्म में बोलने लगते हैं तो आपको कुछ और चीजें मेंशन करनी। अगर फर्ज करें मैं किसी पसमानदा इलाके में जाती जहाँ रहने वाले मोमिनीन को पंचतन के नाम मालूम ना होते, वहाँ रिवायतें ऐसे ही पढ़ी जाएंगी। पैगंबर का एक बहुत प्यारा जुमला है, आगे मुशहिद तेहरानी ने नकल किया है, नहनु माशरुल अंबिया उमरना अनुकल्ले मन्ना का जब कदर अकूल है, हम अंबिया को हुक्म दिया गया है, हम अंबिया के गिरोह को हुक्म दिया गया है लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करें। अगर आप किसी मदरसे में मस्जिद पढ़ रही हैं उस मस्जिद का स्टैंडर्ड कुछ होगा, अगर आप मेरे जैसी जाहिल औरतों से खिताब कर रही हैं उसका स्टैंडर्ड कुछ होगा, आप बलोचिस्तान के किसी देहात में चली जाएं, कोई चीज रह गई रिवायत, हम अंबिया का गिरोह, हमें हुक्म दिया गया है लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक गुफ्तगू करें, पैगंबर का, ठीक। आपको बताओ आप कहां किस जगह पर कैसे लोग, और तारीख की हर हकीकत हर किसी को बताई भी नहीं जाती। हमारे पिछले 20 साल से 30 साल से मेंबर से आने वाला एक बहुत बड़ा इंकलाब, हमने वो मसाइल पढ़ने शुरू कर दिए जो हमारे पाकिस्तान के अवाम हजम नहीं कर सकते। यानी बाज रिवायतें ऐसी हैं, मैं आपको मुस्तनद तरीन मकासिद के साथ सुना दूं, उसके बाद आप मुझे वो मेरी दुर्गत बनाएंगे कि मेरे बच्चे भी बेचारे आएंगे मुझे कायम की सड़क पर गुजरने नहीं देंगे। इसलिए कि हर मालूमात को शेयर करने का भी वो नहीं है, रिवायत को बयान करने से पहले सोचे तो सही, मजमा सह पाएगा नहीं सह पाएगा। आप मोंटेसरी के बच्चों को कभी देखा है, मोंटेसरी के बच्चों को बिठा दे और उसके बाद उनके लिए आगा वही की तकरीर की उर्दू रिकॉर्डिंग लगा दे, क्या होगा? कुछ भी नहीं, भैंस के आगे भी बजाया जा रहा है। ये सबसे अहम चीज है, पढ़ने वाले को एहसास हो वो किन से बात कर रहे हैं, उनकी डेफिसिटी क्या है। नहजो बलागा में मौला ने पैगंबर को एक लकब के साथ याद किए, तबीब उन दब्बारों में सिब ही, पैगंबर एक डॉक्टर की माने थे जो अपना मेडिकल बॉक्स साथ साथ ये लिए फिरता है, ठीक। एक खतीब भी, एक अहले मेंबर भी ऐसे ही है, दीन की तबलीग करने वाला मुबल्लिग, उसे पता हो मुआशरे में इस वक्त कराची में क्या फैला हुआ है, नजला खांसी जुकाम और बुखार। अच्छा डॉक्टर वो है जिसे पता हो, फिंगर टिप्स पे हो, आपने ऐसे ही फोन करके पूछा डॉक्टर साहब ये सारी अलामतें हैं, वो छूटते ही आपको इलाज बता दें। हमारे कराची में बाज इलाके ऐसे हैं जहाँ फिक फिक फिक, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ इखलाक इखलाक इखलाक। आप मजमे की का तकाजा को महसूस करें, मजमे को क्या चाहिए। अगर मजमा सुबह से दो बजे तक फिक की सुन चुके आप तीसरी तारीख ले आए तफसीर ले आए, उमिरना नुकल्ले मन्नासा, लोगों की अकल देखें उनका शऊर देखें फिर उनसे बात करें। कभी अगर फर्ज करें आपको ऐसे लोगों में मस्जिद पढ़ने का मौका दिया जाए जिनका दीन से दूर दूर तक का वास्ता नहीं, जो रोने को अपनी तौहीन तसव्वुर करते हैं, जिन्हें सैयदुल शहदा की सिर्फ विलादत और शहादत इसलिए याद रहती है कि गेट टुगेदर होते हैं, आप उनके ख्याल में क्या आलिमाना फाजराना बातें करेंगे? अगर करेंगे तो आप अपने आप को जाया करेंगे। आपने जवाहिर वहां फैला दिए जिन्हें जौहर और संग्रेजे का फर्क ही नहीं मालूम था। बस ये चौथा पॉइंट। आज है पांचवा, मौजूदा मसाइल और मुश्किलात से दीन से रिलेटेड मुकम्मल होमवर्क। हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए कि हम खबरें पढ़ना शुरू कर दें, मैं बैठ जाऊं और यहाँ बैठ के अब आपके लिए बताऊं सीरिया में आज इतने कत्ल हुए, इतने शहीद हुए, फलानी जगह ये हो गया, पारा चनार में दो मोमिनीन को ये कर दिया गया। मजलिस को मजलिस रहने दें, खबरनामा ना बनाएं। यहाँ फजाइल पढ़े जाएं, ऐसे फजाइल इश्क से अमल की तरफ ले जाने वाले, खुद ब खुद चला जाता है इंसान। बहरहाल फिर इसके जिम्मे सबसे प्यारी बात, जो मजहबी मसला नहीं जानती साफ कह दे नहीं पता। कभी कभी हम खवातीन, मैंने मेरा ये अब नाकिस राय है, बिल्कुल टोटली गलत भी हो सकती है, आप में से बात इत्तेफाक भी कर सकती हैं, औरतों की ईगो बड़ी जल्दी हर्ट हो जाती है, नाक जो है ना नीली हो जाती है, और फिर बच्चे धमकिया लेते हैं अम्मी मैं फेल हो जाऊंगा आपकी नाक कट जाएगी अजीदा जान, अगर बिरयानी बैठ गई तो नाक कट जाएगी, बोटियां खत्म हो गई तो नाक कट जाएगी, हम जाएंगे घर गोश्त अच्छा नहीं गया तो नाक कट जाएगी, हमारी नाक इतनी सेंसिटिव मोम की बनी हुई कट जाती है, फटाफट जुड़ भी जाती है उसी कटी हुई नाक के साथ, हम मिलते नहीं है। मुझे इस बार दिन किसी ने बड़ा प्यारा मैसेज किया था व्हाट्सएप पर, कहा खुदा ने इब्राहिम से बुढ़ापे में दीवी औलाद पला पलाया बेटा मांगा था, इब्राहिम ले गए, हमसे अगर अल्लाह अपने नाम पर चंद अच्छी बोटियां मांगते ना तो हमें रोना पड़ जाता है, रहने फ्रीजर में डाल दो चावे तलके खा लेंगे, सिरिपा अल्लाह के नाम पे दे दो ना, इसलिए कि सिरिपा बनाने का आर्ट हमें कम अज कम मुझे तो नहीं आता, आप मोमिनात को आता हो तो आप बेहतर जानती हैं, मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन बहरहाल जो चीज नहीं जानती टू दी पॉइंट ईगो हर्ट नहीं होगी, कैसे नहीं पता। हम एक मरतबा शेख मुर्तजा मुतहरी ने दास्तान दास्तान में किसी आलिम का वाक्य नकल किया, वो तीसरी सीढ़ी पर मेंबर की बैठा हुआ था, एक औरत आई उसने एक मसला पूछा, कहा नहीं पता, दूसरा तीसरा चौथा, कहा ये क्या बात है ये तुम फिर ऊपर क्यों बैठे हो, कहा ये तो मुझे थोड़ा बहुत पता है ना उसकी लिए ऊपर बैठा हूँ, अगर मैं अपनी जहालत की बाबत ऊपर बैठना चाहता तो आसमान तक मेंबर बनाया जाता, एक्सेप्ट करें बहुत खुले दिल से बहुत वसत से, मुझे नहीं पता, आप किसी अहले इल्म से रुजू करें उन्हीं से पूछें। अब आज मैं खुलासा कर दूं, मेरा टाइम लेट आने वाला भी ओवर हो गया, ठीक। सबसे अहम तरीन और हसास तरीन मंजिल मसाइब की मंजिल, इस मंजिल में हमारे यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक ट्रेंड है, एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज है, वो है हमारे अवाम और खवास दोनों का एक तकाजा। मैं पूछ कर ओके मैंने कहा चाहे उन्होंने मुझसे कहा कि आप पूछ कर आए तो मैंने कहा आप बैठे मैं पूछ कर आती हूँ, ठीक। अब अवाम और खवास का तकाजा वो है मसाइब का तूलानी होना, मसाइब का तुलानी होना, अगर आप कहीं मुख्तसर मसाइब पढ़ती हैं तो आपको किस तरह के कमेंट दिए जाते, ये तो आई लोग छूकर चली गई, ये तो फलाने लामा साहब की तरह हो गई, मर्दों की तरह मसाइब पढ़े, यानी मैंने बाल बुजुर्गान के मुंह से सुना है, और ये मर्दों की तरह मसाइब पढ़े, यानी मर्दों के मसाइब और औरतों के मसाइब में फर्क क्या है, मसाइब के अंदर दो अलग अलग सिंफे हैं, एक है जुबान हाल और एक है जुबान काल। जुबान काल हमारे पास मुस्तनद तरीन मकातिल में से सर फहरिस्त जिन मकतलों का नाम दिया जाता है, सैयद इब्ने ताऊस का मकतल लहूफ, ये कत्ल असूफ उर्दू में भी तर्जुमा लहूफ के नाम से है, इसमें करबला की तुलानी तरीन शहादत, उठाकर देखें छह या सात जुमलों से ज्यादा नहीं, ये जुबान काल है, ये रिवायत और मकतल के अल्फाज है, और इसके बरस जुबान हाल क्या है, यूं हुआ होगा यूं हुआ होगा यूं हुआ होगा। पहली बात तो ये कि एहतियात दोनों में, आपने ये वाक्य यकीनन सुना होगा लेकिन मैं इस वाक्य को सुनाए बगैर रह नहीं सकती, मेरी बात मुकम्मल नहीं होती, जाहिरन आ गए बुरजर्दी का जमाना है, एक मोमिन ने ख्वाब में देखा कि वो जज्बत नाजनी ने सैयद शौदा पढ़ा है और उसमें से गोश्त नोश नोश के खा रहा है, आगा की खिदमत में आया, आकर आगा से कहा आगा मैंने इस तरह से रात को ख्वाब में देखा और मैं बहुत बेकरार, आगा थोड़ी देर के लिए सर को झुकाकर खामोश हो गए, फिर सर को उठाया कहा रोजे खान हो मस्जिद में पढ़ते हो, कहा जी, कहा मस्जिद पढ़ते वक्त सोचे नहीं मसाइल मुस्तनद हैं या मुस्तनद नहीं है, ये वो हसास तरीन मंजिल है जहां बेहतरीन पढ़ने वाले भी बसा औकात अवाम को खुश करने के लिए खवास नहीं खुश होते, खवास क्यों खुश होते, अब फिर आगे वो जल्दी अल्लाह मकाम हुई कही का वाक्य, उनके एक चागिर्द ने नकल किया था, आगा मस्जिद में बैठे हुए थे और आगा अलीज थे, बीमार थे, बिस्तरे बीमारी पर थे, आगा की कैफियत ये थी कि आगा मस्जिद के अंदर नहीं थोड़ा सा साइड पर अब उनके लिए बिस्तर बिछा हुआ था उसके ऊपर नींद दराज से थे, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बैठ सके, मस्जिद बर्पा हुई, आगा मेंबर पर बैठने वाला आया, आकर आगा के सामने तकरीर की, तकरीर के अख्तितामी मरहले में जिस तरह हम लोग अख्तितामी मरहले में मसाइब की मंजिल में दाखिल हो जाते हैं, अख्तितामी मरहले में वो मसाइब की मंजिल में दाखिल हुआ, उसने एक जुमला कहा, लम्मा दखलत ज़ैनब अला इब्ने ज़ियाद, आगा उस बीमारी और उस अलालत के साथ क्या आगा के लिए हिलना बैठना ये सब चीजें बहुत तकलीफ देह हैं, आगा ने एक दफा जोर से आवाज दी और खतीब से कहा खतीब बस उतर आओ, अब देखिए एक मजिस्ट्रेट पढ़ रहा हो, उसे टोक दिया जाए मेंबर के द्वारा, मैम उसे पटा जाएगा। टोकने वाला भी कोई बच्चा या कोई अवाम में से नहीं, एक मर्ज अली कदर है जिसका एहतराम लाजिम है। इस खतीब ने एक जुमला कहा, फौरन पलट कर कहा, आगा भी तो मजिस्ट गर्म नहीं हुई, समझे? अभी तो लोगों के गिरिए की आवाज बुलंद नहीं हुई, कैसे मैं नीचे उतर आऊं? लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मजलिस को मुकम्मल किया जाए, किस चीज से मुकम्मल किया जाए? गिरिए की आवाज ऊंची हो जाए। मैं कभी सोची हूँ अगर मीर अनीस आलल्लाह व मकामा उस जमाने के लखनऊ की बजाय आज के कराची में मजलिस पढ़ते। एक जमाने में लखनऊ, मैंने उनकी जो सवान हयात पढ़ी है, कुछ तो विकीपीडिया पर पढ़ी है और कुछ इधर उधर पढ़ी है, लेकिन उसने एक जगह पर बयान किया, आगा एक जगह मस्जिद पढ़ने गए थे लखनऊ में, लोग मसाइब का चेहरा देख रहे थे। आगा कई साल तक लखनऊ पढ़ने ही नहीं आए, उस पर गजब के आलम में कि लखनऊ वालों को मस्जिद सुनने की तमीज नहीं रही। बका अबका और तबा का, रो रुलाओ, रोने जैसी शक्ल बनाओ। हम चाहते हैं गिरिए की आवाज बुलंद हो, इसे बुलंद करने में हम एहतियात का दामन हाथ से छोड़ देते हैं। आगा ने कहा, जब इस मेंबरी ने कहा ना कि आगा भी तो गिरिए की आवाज बुलंद नहीं हुई, तो इस आगा ने फौरन कहा, इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी? दुश्मनाने अमीरुल मोमिनीन के दरमियान अमीरुल मोमिनीन का नामूस पहुंच गया है, इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं हो सकती आलम इस्लाम पर, बस इससे आगे कुछ नहीं। और इस खतीब ने आगा के का एहतराम करते हुए मस्जिद को समेट दिया। अब ये एक सोच है अवामुन्नास की कि गिरिए की आवाज बुलंद होनी चाहिए। मैं आपसे सवाल करती हूँ, गिरिया कब किया जा सकता है? जवाब दे, जब दिल में गम हो। मैं आपसे सवाल करती हूँ, आंखों में आंखों का बात है। शेख मुसा मुदरी ने बड़ी प्यारी बहस की है मकसद में, कहा देखें आपको रोने के लिए एहसास चाहिए, आप ऐसे, मैं आपको बताऊं प्रोफेशनल स्माइल दी जा सकती है। प्रोफेशनल स्माइल पता है कौन देते हैं? एयर होस्टेस से, होटल्स के रिसेप्शन पर जो खड़ी हुई होती है, जो खड़े होते हैं, वो भी प्रोफेशनल स्माइल देते हैं। शेख मुसा मुदरी का कहना यह है कि हम पैसे देकर किसी को हंसा सकते हैं, इनको इनको पैसे मिलते ना स्माइल ऐसे करने के। आगा कहते हैं अगर मस्जिद में ऐलान कर दिया जाए, ये शायद 42 साल पुरानी उनकी तकरीर है, कहते हैं मजमे के अंदर हजार हजार तुम्हारा तकसीम करके कहा जाए शाह अब्बास सफवी के लिए गिरिया करो, लोग रोएंगे? रो नहीं सकते आप, पैसे लेके रो नहीं सकते। रोने के लिए आपको सेंटीमेंट चाहिए, आपको जज्बात चाहिए, आपको किसी बात पर दिल दुखे आपकी आंखें नम हो जाए, रोने के लिए आपको एहसास चाहिए। आगे मोहम्मद तकी बैजत ने इस आजादारी के इन एहसास को बेहतरीन मुस्तहबात में से करार दिया। हत्ता आगा का, आगा से सवाल किया गया इसका सवाब ज्यादा है या नमाज शब का, तो आगा ने कहा बईद नहीं है इसका सवाब नमाज शब से ज्यादा हो। फिर किसी सवाल करने वाले से, देखिए सवाल करने वाले भी हल्का हाथ नहीं रखते मराजेन के लिए, आयमा के लिए नहीं रखते थे, मराजेन तो बहरहाल नुमाइंदे हैं उनके। आगा से सवाल किया गया, कहा गया कि ऐसे कैसे आप कह सकते हैं इसका सवाब नमाज शब से ज्यादा? कहा मुमकिन है एक शख्स जिस्मानी तौर पर नमाज शब पढ़ रहा हो, रूहानी तौर पर वो मुसल्ले पर मौजूद ना हो, लेकिन रोने के लिए आपको सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं रूहानी तौर पर भी मौजूद होना पड़ेगा। रो नहीं सकते जब तक आप इन्वॉल्व ना हो, आपका जहन इन्वॉल्व ना हो। अच्छा, आप इस रुलाने के लिए क्या सिर्फ एक टेक्निक है? आपने वो वाकया भी शेख मुसा मुदरी की किताबों में पढ़ा होगा, अलबत्त मुहद्दिस जलील कद्र मरहूम मुहद्दिस नूरी ने भी इस वाक्य को नकल किया है। कहा कि एक तलबा था किरमान का रहने वाला, किरमान से अपने एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद कहा कि ये तलबा जब जा रहा था रास्ते में, अब पुराने जमाने में रास्तों में जारी बात है रेस्टोरेंट्स नहीं थे, होटल्स नहीं थे, ये तलबा रास्ते में एक मस्जिद के करीब से, देहात के करीब से गुजरा, इसने देखा मस्जिद में मस्जिद हो रही है, ये मस्जिद में दाखिल हो गया। इसने कहा चलो अच्छा है, नजर आज मिल जाएगी, कराची की मस्जिद होती तो बिरयानी की थैलियां भी मिल जाती। कहा के मस्जिद में बैठ गया, कहा इसने देखा जैसे ही मस्जिद शुरू हुई है चिराग बुझाए गए हैं, मस्जिद के खादिम ने ढेले, मिट्टी के ढेले, पकी हुई मिट्टी जो होती है, पत्थर छोटे छोटे से उठाए हैं और मौलवी साहब के मेंबर की पैंटी पैरों के पास रख दी।
मसाइब के दौरान मौलाना साहब ने और कुछ नहीं किया, वो मसाइब पढ़ रहे थे, ये खादिम मजमे पर पत्थर फेंक रहा था। अब ये बेचारा तलबा डर गया, ये क्या बात हुई, ये नया तरीका है लोगों को रुलाने का। मैंने मजलिस खत्म होने के बाद ये तलबा कहता है, मैंने इन मौलाना साहब से कहा ये क्या तमाशा था जो मजलिस के बाद हो रहा था, आखिर में कहा ये लोग बड़े जाहिल हैं बेचारे तरीके के, इन्हें पता नहीं इमाम हुसैन पे रोने की बड़ी फजीलत है, इनके लिए कुछ भी पढ़ दिया जाए ये रोते नहीं हैं। और हमने सोचा है कि मजलिस में रुलाना और रोना दोनों सवाब रखते हैं, तो हमने सोचा मजमे को पत्थर मारे, पत्थर पड़ेंगे तो रोएंगे तो सही, फिर आखिर और ये रोएंगे इन पे भी जन्नत वाजिब हो जाएगी और मेरे भी हिस्से में जन्नत आ जाएगी। तो इस तरह की सूरत हाल, अब ये वाकया तारीखों में मौजूद है, हम इस वाकये को डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ अगर हम बिला वजह मसाइब को तूल दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मजमा रोए, और इस तूल देने में जुबान हाल और जुबान काल दोनों का सिलसिला मुनकते हो जाता है, पहली बात तो हम तय नहीं कर पाते कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में छोटी छोटी दो तीन मिसालें दूं, जिस तरह के मसाइब बयान हो रहे हैं मनाबिर से, इन रिवायतों को बयान करने वाले क्या रिवायत को बयान करने की शराइत से आगाह होते हैं, जवाब दें। असल सिरे से हमारी जाकिराएं कोई ऐसा छोटा सा कोर्स करें जिसमें उनको रिवायत को बयान करने की शराइत पढ़ाई जाती हूँ, मदारिस से वाबस्ता है लेकिन जो मदारिस से वाबस्ता नहीं है उनकी बात करें, मदरसे में देखें आप मोमिनात पर कायम बैठी, आपने तो यकीन रिवायत को बयान करने की शराइत पढ़ी है, लेकिन हमारी वो बहनें जो मेंबर पर रौनक अफरोज को होती हैं लेकिन किसी भी मदरसे से वाबस्ता नहीं है, नतीजा क्या निकलता है, नतीजा मैं कुछ अर्सा जाकिराओं की ट्रेनिंग में, बहुत अर्सा कुछ अर्सा नहीं यानी कई साल पहले की बात है, एक जो नो आमू जाकिराएं होती हैं जो जाकिराओं की ट्रेनिंग चल रही होती है उसमें मैंने एक रिवायत सुनी, रिवायत पढ़ते वो पढ़ रही थी और मेरी छुट्टी गुम हो गई कि आप रिवायत कहाँ से ले रही हैं, उन्होंने एक किताब का और एक मुसनफ का नाम ले लिया, मैंने उनसे कहा आप ऐसे कैसे रिवायत को नकल कर रही हैं, आप एटलीस्ट देखी तो सही रिवायत अखले सलीम से टकरा रही है। लेकिन असल बहस क्या है, जब हम तुलानी करने लगते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें किस हद तक सैयदुश्शोहदा, बसा औकात हम सैयदुश्शोहदा की मुसीबत को बयान करने की बजाय, शहीद मुजम्मदरी के अल्फाज दोबारा आपकी खिदमत में बयान करूं, शहीद मुजम्मदरी कहते हैं हम कभी कभी सोचते इमाम हुसैन के गम कम थे, उनकी मुसीबतों में इजाफा कर दिया जाए। जब हम इस तरह के जुमले, अब मेरे पास जो मिसालें हैं वो मैं क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर इतनी अच्छी नहीं हूं कि बहुत ज्यादा मजलिसें सुनने का मुझे सआदत मिलती रहे, मैंने जो जुमले लिए हैं वो जुमले मैंने नोहों से उठाए हैं, मारूफ नोहा खानों के, फर्क नहीं पड़ता। अब कहते मसाइब के असास नज्म में थी, नसर में नहीं थी, ये तो बहुत देर के बाद नसर की तरफ गए हैं मसाइब, मुसीबतें असासी तौर पर मराती मरती की जमा बुनियादी तौर पर शेर की सूरत में थे, मसलन सैयदुश्शोहदा ने एक मरतिया कहा अबुल फजल अब्बास की लाश पर, फिर एक शेर मख्तल में मिलता है 11 मुहर्रम को शहजादी उम्मे रबाब का लाश सैयदुश्शोहदा पर, और फिर वो सिलसिला चलता 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 आगे, फिर आयमा के बाद आयमा के सहाबा ने ऐसे ऐसे जुमले कहे हैं। कुमैत असदी की रिवायत आपकी खिदमत में बयान करूँ, जो मसाइब बयान किए जाते हैं इनका मकाम कितना है, और उसके बाद फिर मैं आपकी खिदमत में इस पाकिस्तानी लोहे के एक जुमले को नकल करूँ। कुमैत अय्याम तशरीक हैं 11-12 ज़िलहज्जा, ये हज के कुर्बानी के बाद के दिन, इमाम सादिक हज के लिए अपने खानवादे के साथ तशरीफ लेकर गए हैं मक्का, इमाम को खबर दी आने वाले ने कि मौला कुमैत असदी आपसे मिलने के लिए आपके खेमे में आ रहे हैं, आपसे इजाजत तलब करें। इमाम ने कुमैत का नाम सुना, इमाम के चाहने वाले हैं, शायर हैं, इमाम के जद का मसीहा पढ़ने वाले हैं, इमाम ने इजाजत दी, कुमैत इमाम की खिदमत में आए, और जैसे ही इमाम की खिदमत में आए कुमैत ने इमाम से कहा कि मौला मैं आपकी खिदमत में कुछ अशआर कहना चाहता हूँ, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुमैत ने जैसे शेर का नाम लिया, इमाम ने कहा कुमैत अय्याम अय्याम तशरीक है, शेर व शायरी के दिन नहीं है। कुमैत ने कहा मौला ये आदि शेर नहीं है, ये जो शेर है ये सईदुल शुहदा की मुसीबत को मैंने ये शेर कहे हैं। जैसे सईदुल शुहदा का नाम आया, इमाम ने कुमैद से रिक्वेस्ट की कुमैद थोड़ी देर रुक जाओ। जो खादिम इमाम के पास मौजूद था, इमाम ने उस खादिम से कहा जाओ हमारे साथ जो बनु हाशिम की खवातीन मदीने से आए हैं उन्हें इस खैमे तक लाया जाए। खैमे में बनु हाशिम की खवातीन आ गईं, खवातीन बनु हाशिम की पहुंची, इमाम ने हुक्म दिया खैमे में पर्दा लगा दिया जाए। खवातीन एक तरफ बैठ गई, मर्द हजरात एक तरफ बैठ गए। इसके बाद इमाम ने कुमैद से कहा कुमैद अब पढ़ो। कुमैद ने कुछ मुख्तसर से अशार इमाम सादिक की खिदमत में गए। अब देखे इमाम सादिक के दो जुमले, मैं कहती हूँ कुमैद के पास सारी जिंदगी कुछ भी ना होता, ये दो जुमले ही इमाम सादिक के कुमैद के लिए बहुत बड़ा खजाना थे। इमाम सादिक के दुआया जुमले देखे, इमाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा लिल कुमैद मा तकद्दमा मिन ज़म्बिही व मा तअख्खरा, खुदाया कुमैद के पिछले गुनाहों को बख्श दे। वाला यहाँ तक कह देते इन शेरों के बदले बहुत था, लेकिन इमाम फरमाते हैं व मा तअख्खरा, जो आने वाली जिंदगी में मुझसे कोताहियां होंगी ना तो उनसे भी दरगुजर फरमा। ये है उन अशआर उन मसाइब का नतीजा जो इंसान मुसीबत सैयदुल शुहदा में कहता है, या नाउज़ु बिल्लाहि ज़ालिक सुम्मा नाउज़ु बिल्लाहि ज़ालिक, कभी कुछ ऐसे जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं कि अकबर की जवानी बर्बाद हो गई। हक नहीं है हमें इस तरह के जुमले अपनी जुबान से निकालने का। ये जो जुमले जुबानों से निकाले जाते हैं सूरह मुबारक के काफ के आयत नंबर 16 और 17, कुरान के हमने तुम्हारे लिए फरिश्ते रखे हैं, तुम्हारी जुबान से जुमला निकलता है, ये इन जुमलों को नोट डाउन कर लेते हैं। और हमारा जो एहसास जिम्मेदारी है वो इसलिए भी ज्यादा होना चाहिए कि हम जिनके लिए कह रहे हैं वो बहुत बसा औकात हमारे जुमलों से ही अपनी जिंदगी के रास्तों को मुअय्यन करते हैं। बस मसाइब में एहतियात, मसाइब में आप कोशिश करें अहले इल्म प्लस अहले मेंबर के मसाइब से इस्तेफादा। मैं दो नाम लूंगी यहाँ आपकी सहूलत के लिए। पहला नाम मरहूम नकन आला मकामहू का, ऐसे लोग जिनकी इल्मी बुनियादें मजबूत थी, जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में रहते हुए उनके जवार में रहते हुए इल्म को हासिल किया। दूसरा नाम मरहूम निशान हैदर जवादी आला मकामहू, आसान सलीस उर्दू, खूबसूरत पेराए में मसाइब का तस्किरा। अब इसके बाद अब बिल्कुल आखिरी चीज, कितने पॉइंट हो गए, 6, 7वां, अगर फिक्र पर अबूर नहीं हो तो हाथ मत लगाए। हमें जरूरी नहीं है कि हम इस फील्ड में अपने आप को हर फन मोला मनवाए। फिका तसलसल चाहती है, फिका तबाहुर चाहती। सैयद शौदा इमाम सज्जाद जिन चीजों पर फख्र के उनमें से एक तफक्कुह फिद्दीन है, परवरदिगारा तेरे एहसान तूने हमें तफक्कुह फिद्दीन दिया। नहीं जानती छोड़ दे, अगर अलग खुसूस मस्जिद के बाद खवातीन का एक शौक होता है आके मस्जिद पढ़ने वाली खातून से मेरी सर्जरी हुई थी मैं यूं नमाज नहीं पढ़ सकती थी, मैंने फलाने वक्त में यूं कर दिया, ढिमकाने वक्त में यूं कर दिया, खवातीन उस सब मुफ्ती का नुमाइंदा नहीं बजात खुद मुफ्ती बन जाती है। जो दे जाते थे वही ना, ईगो हर्ट ना हो, ये नाक ना कटे। बहरहाल फिका पर अबूर नहीं हो उसे हाथ भी मत लगाए, उसके पास से भी मत गुजरे। साफ दो टूक कह दे हम फिका के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। 8वां, अपनी सिंफ का दिफा करे। अब कुछ लोग मस्जिद में जाते हैं इसलिए आपकी भी सुनेंगे इनकी भी सुनेंगे, फिर आपको आगे कहेंगे उन्होंने तो ये पढ़ा था। ये लोगों का एक मिजाज बन गया, खुसूसन शिया नशीन इलाकों के लोगों का, और खुसूसन ऐसी खवातीन का जिनके पास जरा फुर्सत के मौके ज्यादा ही फराहम है, वो 5-6 मजलिसें सुन लेती हैं, आखिरी मजलिस में आकरा को घेर लेती हैं। आपने ये पढ़ा जनाब कासिम के बारे में, सुबह फुलानी आपा बैठी हुई थी उन्होंने तो वो पढ़ डाला। आप अपनी सिंफ का दिफा करें। आप देखते हैं डॉक्टर्स के बारे में लोगों को शिकवा होता है, कोई डॉक्टर पिछले डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को ओके नहीं कहता, लेकिन आप ये काम ना करें। ओके, आप ये काम ना करें। आप, मैं ये नहीं कह रही कि आपने जो गलत गलत भी पढ़ा होगा आपने नहीं सही पढ़ा होगा, लेकिन आप इस तरह के मामले में इन्वॉल्व होके इस सिंफ का नाम खराब ना किया। सिंफ यानी हमारी फील्ड, सिंफ स्वाद नून पे मेरी तो, अरे भाई मेरी तो अपनी उर्दू में आखिरी पॉइंट यही है, उर्दू अपनी कंट्रोल करें जैसी मेरी होने वाली है। और फिर आखिरी चीज, मजलिस के दौरान सख्त नाकाबिले फहम अल्फाज का इंतखाब ना करें। इससे मुमकिन है मजमा मरऊब हो जाए। यानी मैं पिछले दिन एक मस्जिद सुन रही थी, पूरी मस्जिद के दौरान एक लफ्ज से सुनिए टक गई, दस्त-ए-ज़रर मुहतमल। और ये क्या था, इसको तो पढ़ने के लिए हिज्जे करने पड़ेंगे। आप बोले दस्त-ए-ज़रर मुहतमल, ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे मुस्तंसर होता है टाड़ खुद सुनती नहीं। मुश्किल अल्फाज। हमने बच्चों से सर्वे करवाया, बच्चों से पूछा मस्जिद में क्या चीज अच्छी नहीं लगती। कहा दाखिले बाद अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करती हैं जिन अल्फाज के बारे में हमें माना ही नहीं पता। अब मैं आपको एक प्यारी सी मिसाल बनाकर दूं, जैसे लफ्ज खुद खुद वो जो जीरा के ऊपर कैप हेलमेट, ठीक है। अब आप मुसलसल कह रहे हैं खुद की, खुद से खून निकलने लग गया, आहनी खुद पहने हुए थे हजरत अब्बास, और ये हो गया। अब वो जो नीचे बैठा हुआ बच्चा है उसे लफ्ज खुद ही का माना नहीं पता, वहां की मजलिस में अटक जाएगा। देखिए जब हमें कोई चीज समझ नहीं आती ना, हमारे तो ये अटक जाती, यूं खड़ी हो जाती, हो ये क्या कह रही है आंटी, अरे आगे बढ़ती नहीं है। नतीजा क्या निकलता है, ना फजाइल का पैगाम जाता है ना मसाइल का पैगाम जाता है। रोने वाले के आंसू रिवर्स गियर में चले जाते हैं और फजाइल में आपका टेम्पो टूट जाता है, फजाइल में आपका टेम्पो टूट जाता है। और बस अब एक आखिरी चीज और उसके बाद आपकी रहमत बिल्कुल खत्म। हमारे यहाँ कुछ अट्टे से एक और इनकलाब भी आया है, मजालिस से फजाइल को निकाल दिया जाए, नाउज बिलंदालिक सुमा नाउज बिलंदालिक। बाद लोग कहते हैं ये सब तो हमें पता है, मौला के फजाइल हमें पता है, कुछ तबलीगी मजलिस होनी चाहिए। सुने होंगे आपने ऐसे लोग। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, मैं अपने ऑन पर, अब मैं उधेड़ उम्र में नहीं, मुझे किसी ने डालना, मुझे बड़ा दुख होता है अगर कोई मुझे उधेड़ उम्र खवातीन में डाल देता है। अभी तो मैं इतनी बुढ़ी नहीं हुई, लेकिन अगर मेरे जैसा तबका, हमारे साबका अहले मेंबर ने हमें फजाइल सुनाए, हम जान गए, हमने अगर आने वाली नस्ल को फजाइल नहीं सुनाए तो उन्हें फजाइल कौन सुनाएगा। हमने अपने गुस्ताख से पिछले साल इस्तकबाले माहे मुहर्रम की एक छोटी सी तकरीर कह लें, क्लास कह लें, वर्कशॉप कह लें, कुछ भी कह लें, हाँ हमने उनसे एक सवाल किया। हमने कहा हम महसूस करते हैं कि हमारे वालदैन तमाम तर मुश्किल के बावजूद, देखिए वो इल्म का ग्राफ नहीं था, वो सहूलियात, वो वसाइल, वो आसाइशें नहीं थी। अब तो आप देखिए नेट पर कितनी मजालिस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन हौजात चल रहे हैं, बहुत सारी सहूलियात हैं। मैंने कहा उसके बावजूद हमारे वालदैन ने हमें एक चीज दी बड़ी शद्दोमत से दी, वो थी अहले बैत की मोहब्बत। हमें पता है, हमने गिरना भी है ना, मोहसिन मेरी लहद का वो मंजर अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा, और अभी वो जो इस जगह का वो मीर हसन मीर का खैबर का वाकया सुनो, उसने वो उसने कहा कि या अली से मौला ने बेसाख्ता कहा। ये चीज हमारे अंदर थी, लेकिन हम महसूस करते हैं हम अपनी नई जनरेशन को नहीं दे पाए। इसकी बुनियादी वजह क्या है, पिछले 20-25 साल से एक इंकलाब बरपा है, मजलिसों में तबलीग तबलीग तबलीग, फजाइल को हमने संसर कर दिया। हत्ता मुझे बहुत दुख से ये बात कहना पड़ती है कि मुझे एक बच्चे ने आकर कहा कि आज मौलवी साहब ने बड़ी शानदार, ये रमजान की बाहर बार के रमजान की बात है, मौलवी साहब ने बड़ा शानदार वाक्य पढ़ा। मैंने कहा भाई क्या पढ़ डाला सुना दो, इतने अच्छे फजाइल पढ़े, मेरा तो दिल शाद हो गया, अच्छे से ऐसी कोई मस्जिद मिलाद नहीं सुना था, ऐसी तकरीर नहीं। अरे भैया वो कौन सा वाक्य था जो सुना तुमने, हमने क्यों नहीं सुना। उसमें इमाम हसन का दरबार है, माविया इब्ने अबी सुफयान ने वो मुनाजरा पढ़ा जिसमें इमाम ने कहा था कि माविया ने और उसके हवारियों ने कहा कि हसन आएंगे हम उन्हें ख्वार करना चाहेंगे, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सुमा नाउज़ बिल्लाह। मैंने कहा ये तो बहुत पुराना वाक्य है, और 100 दफा का सुना हुआ पड़ा वाक्य है। तो उस बच्चे ने फौरन कहा मैंने तो कभी नहीं सुना था, पहली दफा। अपने साथ मत जांचें नई जनरेशन को, हमारा हमारे फिर भी हमारे गुज़िश्ता अहले मेंबर। अच्छा जरूरी ये भी नहीं है कि आप अपनी मस्जिद के अंदर एक ही चीज रखें। मुझे याद है डॉक्टर आबिद हुसैन जैदी साहब की जो एक जाकिराओं वाली रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी, उसमें उन्होंने कहा था मसालों की चाट भी बनाई जा सकती है, मस्जिद में आप बहुत कुछ डाल सकते। पढ़ने वाले बेहतरीन पैराए में फजाइल के साथ तबलीग बिगड़ जाते थे, ये आर्ट है। देने वाला बहुत देर में बात होता तो आप हंसते से तंज कर जाते, पता भी नहीं चलता, लेकिन जब चुपती हुई कोई बात कही जाती तो फिर गुस्सा चढ़ जाता हमें कि भाई हमें ऐसे कह रही थी, खुद बड़ी से नाउल्ला हमें भी पता कैसी है, इस तरह की बात है। इसलिए कि बात होता जाकिर ऐसी बात मेंबर से कहती है और नीचे वाला मजमा बेचारा सटपटा जाता है। मैं कहती हूँ सटपटाता नहीं है, बिलबिला जाता है कि ये कर क्या रही है, ये क्या कह रही है, किसे सुना रही है। लेकिन बहरहाल फजाइल होने चाहिए, फजाइल हमारे मेंबर की रौनक थी। आप जब फजाइल अच्छे पड़ेगी ना तो मसाइल में आपको लंबा खेचना नहीं पड़ेगा, वही खुद ब खुद बहुत सारी चीजें सिमट जाएंगी। मुझे आखिर में 5-7 मिनट आपके सवाल के लिए भी रखने हैं, लेकिन बहरहाल आगे अब्दुल हादी शिराजी का वो जुमला जहन में रखते हुए, मरहूम मिर्ज़ा जवाद तबरेजी आलल्लाहु मकामहु के हवाले से एक जुमला नकल किया गया है एक मरतबा दरस खारिज में किसी तालिब इल्म ने इश्काल किया, एतराज किया। आगा ने सवाल का जवाब दिया, उस तालिब इल्म की तशफी नहीं हुई। उसने दोबारा सवाल किया, आगा ने जवाब दिया, तशफी नहीं। तीसरी दफा जब उसने सवाल किया तो आगा ने कहा, हमें बहस मुकम्मल कर लेने दो। तो इसने गुस्से में आकर कहा, मगर इंजा रोजे यहाँ क्या मजलिस हो रही है जो आप अपनी बात पूरी करेंगे, फिर आप जो है वो कहेंगे कि मेरे सवालों के जवाब देंगे। तो मेरे लिए जिसने नकल किया और मैंने जिस तरह किताब में पढ़ा, कहा आगा की आंखों में आंसू आ गए। दरस खारिज अंदाज आए, रफली आइडिया के लेना तो हजार दो हजार तो आगे बैठा हुआ, और वो जो आगे बैठे हुए थे वो खुद भी बड़े पाए तालिम होते। कहा ए काश रोजे बूझ, आगा तब्दीली फरमाते हैं, काश ये मजलिस होती, हम ये सोचें मजलिस क्या है। अल्लामा अमीनी साहिब अल गदीर ऐसी शख्सियत है तारीख तशय्यो की बेमिसाल। मैं कभी कभी उनके बारे में सोचती हूँ आगा क्या थे। आगा फातिमिया फरमाते हैं, अल्लामा अमीनी व अमसाल उन जैसे। मैंने भी खुद सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने से मना किया, खुद करती हूँ बड़े बेधड़क जुबान पे चढ़े हुए हैं। दुआ करें खुदा मेरी सुधा और हिदायत कर दे। मैं भी इमाम हुसैन देखो पहली मुहर्रम को, मौला मेरी जुबान रवान हो जाए। खैर मैं जिनमें बैठी उनकी उर्दू से भी खराब है, आप सोचे मेरी उर्दू का क्या जनाजा निकल आए। अमसाल आगे अमीनी जैसे लोग, इनके पास इशराफ खास होता है। इशराफ खास आप समझते हैं, एक खास अप्रोच। मैं अगर आम अल्फाज में बिल्कुल अवामी जुबान में आकर बात करने लगू ना, तो हमारे दरमियान यकीनन कुछ ऐसी मोमिनात बैठी होंगी जिनकी बड़ी अप्रोच होगी। मिसाल के तौर पर आप में से किसी मोमिना के भाई का अपना स्कूल हो, मैं अपनी बच्ची की एडमिशन के लिए हर जगह से खार होते हुए आप तक पहुंचूं और मैं आपसे कहूँ प्लीज मेरी बच्ची का एडमिशन करवा दें, आपके भाई के पास एक अप्रोच है अगर भाई से ताल्लुकात अच्छे हैं। मैं आपके पास जाकर बैठी, आपने पानी का गिलास पिलाया, मैंने अपनी रिक्वेस्ट किया, आपने का जहरा पास समझे काम हो गया, मैं फिर भी आपके पीछे पड़ जाऊँ, नहीं आप एक फोन कर दें, बस जरा मेरे अपने भाई से बात करवा दें, वो मुझे इत्मीनान दिला दें, मैं जाकर प्रोस्पेक्टस ले आऊंगी, मैं जाकर फॉर्म फिल कराऊंगी। आपके जहरा पास आपने कह दिया बात खत्म। इसे कहते हैं इशराफ खास। अगर फातिमिया फरमाते हैं, अल्लामा अमीनी का इशराफ खास कैसा था। सद्दाम का जमाना है, इराक का वजीर तालीम अहले सुन्नत में से। ये मैं पहले भी अकाय में पढ़ चुकी हूँ लेकिन तबरुकन पढ़ रही हूँ। इसका सेक्रेटरी आगा की खिदमत में आया, आकर कहने लगा एक खत है इसके हाथ में, इराक के वजीर तालीम जो बरादरान अहले सुन्नत के मतलब से ताल्लुक रखता है उसका। उस खत में लिखा हुआ आगा के लिए एक जुमला कहा कि मेरा एक ही बेटा है इस दार दुनिया में, करीबुल मर्ग है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, मुझे नजर के अहले सुन्नत उलमा ने बताया है तुम्हारी अमीरुल मोमिनीन के साथ, ये अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करी, तुम्हारी फर्जंदे अबू तालिब के साथ बड़ी बनती है, बड़ी अप्रोच है। मैं तो उस वक्त मानू जब तुम मुझे मेरा बेटे की जिफा लेकर दो। आगा फातिमिया कहते हैं, कागज पकड़ा, उल्टा किया, पीछे लिखा खुदा से अमीरुल मोमिनीन के सदके में मैंने तुम्हें तुम्हारे बेटे की शिफा ले दी। आगा कहते हैं ये कागज नहीं, ये आबरू है। अगर फातिमिया हरम इमाम रजा में तकरीर करते फरमाते हैं, कहा हमें कोई कहता ना हमारा मरीज कोमा में है, हम कभी नहीं कहते घर जाओगे तो वो घर होगा, हमें अपनी दुआ पे भरोसा नहीं, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, हमारे ऐसे रिलेशन ही नहीं है आइम्मा के साथ। नो पेन होंगे ठीक है ना, जिसने जिसने अपनी जिंदगी के 50 साल दिए अलगदीर को, जिसने अमीरुल मोमिनीन के लिए जिसका खाना पीना सोना ओढ़ना बिछोना, जिसका हम मुखम अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत थी, जिसने अकदस घुल घुल के आखिरी जमाने में बीमार हो गए थे, शहादत रहलत इनकी मस्जिद मुकद्दस में है, जसद अकदस को नजर पेशरफ में ले जाकर इनकी लाइब्रेरी के करीब यानी वहाँ एंट्रेंस पे दफन किया गया है। कहा ये कागज लेकर इराक का वजीर तालीम का सेक्रेटरी निकल गया। कहा ये कितनी देर में पहुंच जाएगा, 15 मिनट 20-25 इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना, गाड़ी भी आए वो। कहा वो निकल करके आगा भी निकल गए, मामा पहना बाकबा पहने हरम में मेरे मोमिनीन में आए। आकर सिर्फ एक जुमला का कहा, मौला मैंने ड्राफ्ट भिजवा दिया है, बस आपके साइन की जरूरत। यह इशराफ खास जब इंसान समझ ले आपने अमीरुल मोमिनीन के लिए कुछ किया है। और यही आगा अमीनी थी जब इंतकाल हुआ मस्जिद मुकद्दस में, इनके बेटे ने नकल किया, कहा सारे नजफ के जो बड़े मस्जिद के उलमा थे सब आए कंडोलेंस के लिए, मैं मुंतजिर था एक शख्स का, वो नहीं आए। तीसरे दिन जब वो आए, मुझे खादिम ने आकर बताया कि फुला साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैं पहुंचा जहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट थी, मैंने पहुंचने के बाद उनसे कहा कि मैं तो मुंतजिर था, आपकी बाबा के साथ इतनी अच्छी दोस्ती थी, मैं एक्सपेक्ट करता था फौरन जनाजे के बाद भी आएंगे, घर में बैठेंगे, इंसान करीबियों से ताल्लुकात जैसे होते हैं वैसे एक्सपेक्टेशन रख लेता है। कहा मैंने जब तुम्हारे बाप की जनाजे के साथ कब्रिस्तान गया ना, जब भी मेरे दिल में ख्याल था, मैंने कहा जब तक मेरे इस ख्याल को यकीन की सनद नहीं मिलेगी ना, मैं तुम्हारे पास अफसोस करने नहीं आऊंगा। बेटे ने पूछा क्या ख्याल था। कहा मैं तुम्हारे बाप को बहुत सालों से जानता हूँ, डॉक्टर जाफर शहीदी के अल्फाज हैं अगर मिनी के लिए, जब उसने कहा है ना 10,000 किताबों को पढ़ा है, तो 10,000 किताबों को पढ़ा है, खुलासा नबीसी की है, नोट्स बनाए हैं, ऐसे नहीं कि 10,000 किताबों को पढ़ा, एक एक दफा पढ़ा है। कहा मैं तुम्हारे बाप को बहुत अच्छे से जानता था, मैं जानता था बहुत खिदमत गुजार है, बहुत रहमतें हैं, लेकिन मैं सोचता था तुम्हारे बाप ने जिंदगी में मेरे मोमिन के लिए बहुत कुछ किया, अब तुम्हारा बाप अली की सल्तनत में चला गया है, अली तुम्हारे बाप के लिए क्या करता है। कहा गुज़िश्ता रात मैंने ख्वाब में देखा, मैदान मैक्चर है, हौज़े कौसर है, हौज़े कौसर से आपको पता है हर किसी को उसके हिस्से और एफर्ट के मुताबिक जितना मीठा डालेंगे ना उतना गुड़ मिलेगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा मिलेगा। कहा किसी के लिए इतना ग्लास है, किसी के लिए इतना, किसी के लिए बड़ा था। कहा मैंने देखा मौला बैठे हुए, लोग आ रहे हैं, हौज़े कौसर पे सैराब हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, एक गहमा गहमी का सस्ता। दूर से मेरी नज़र तुम्हारे बाप के चेहरे पर पड़ी, और सिर्फ मेरी नज़र नहीं, अमीर मोमिन की निगाह भी तुम्हारे बाप के चेहरे पर। कहा अमीर मोमिन ने अपनी मसनत को छोड़ दिया, तुम्हारा बाप हौज़े कौसर के दहाने पर पहुंचा, अमीर मोमिन ने कबा की आंखें ने पलट ली, अपने चुल्लू में हौज़े कौसर से पानी लेकर तुम्हारे बाप के होंठों से लगाया और एक जुमला कहा, अल्लाहुम्मा भाई किस वजह का कमा भाई ये सवाजी, अमीनी तुमने जिंदगी में जिस तरह मेरी आबरू की हिफाजत की है, खुदा कयामत के मैदान में तुम्हारी आबरू की हिफाजत करे। कहा ये वो मोहम्मद जी है वो मकाम जिसे मकाम इशराफ खास कहा जाता है। जिस तरह से करेंगे जब हम फजीलत को समझ जाएंगे ना, तो फिर मुसीबत को समझने में देर नहीं लगेगी। और हकीकत है जिस तरह के फजाइल अहले बैत से, वैसे ही मसाइब अहले बैत होनी चाहिए। अब सवाल, एक अच्छी मजलिस कितनी देर की होनी चाहिए? ये वैसे मैं आपको बताऊँ टाइमिंग्स पे डिपेंड करता है। मैंने कभी महसूस किया सुबह का मजमा हमेशा फ्रेश होता है, शाम का मजमा बेजार सा होता है, उसमें तो 35 मिनट भी बहुत होते हैं, 35-40 मिनट समेट दे। इसलिए कि लोग वाकई लोग शायद इस वक्त नफा नफसी का आलम है, परेशान भी हैं। अगर फर्ज करें मैं शाम की मस्जिद या मगरिब के बाद की मस्जिद तो कभी भी तुलानी नहीं होनी चाहिए। खैर मेरा तो अकीदा ही सिरे से है कि मस्जिद मगरिब के बाद होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि जो खवातीन रात को टोले बनाकर निकलती हैं, ये वैसे भी तशय्यु की वजाहत को भी बस औकात खराब करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल घर के अफराद मर्द हजरात ही बड़ा खुश होते हैं कि बेगम साहिबा तशरीफ ला रही हैं 10:30 सवा 11 बजे। तो ये सिलसिले हैं। मसाइब कितनी देर के होने चाहिए? याद रखिए मसाइब करबला के बारे में हुक्म है, जब तक आंख में नमी है करबला में रुको, फिर छोड़ दो। आंखों में आंसू आ गए, बात खत्म। जरूरी है आपने आहो फुगा आवाम का को ट्रेन करें कि वो रोए आवाज के साथ, इसलिए कि बकौल आगा वही क्या छठे इमाम चाहते हैं कि गिरिया आवाज के साथ किया जाए, रिवायतों से मिलता है। मुसीबत के लिए बसावत एक जुमला काफी है। बकौल आगा एक फातिमी नहीं आगे हरम हजरत मासूमा के खतीब फरमाते, कहा मजलिस पढ़ने में सिर्फ आप इतना महसूस करवा दें किसी को, मुसीबत महसूस कर ली जाए फिर रोने की रुलाने की हाजत नहीं रहती। उन्होंने एक शेर नकल किया है मिर्जा नैयर तबरेजी का। आगा फातिमिया का नजरिया ये है कि ये शेर नैयर तबरेजी का नहीं है, रूहुल कुदुस ने उनकी जुबान से जारी करवाया। उस शेर का मैं आपको वो शेर सुनाऊं, फारसी से तर्जुमा करूं कि इमाम हुसैन अली अकबर के बालीन पर पहुंचे और कहा कि दीदे बगुशा मरा दिल खून ना कुन, ज़ादे ये लैला मरा मजनून ना कुन। इसी तरह का एक शेर मीर अनीस ने भी कहा है, लेकिन मीर अनीस के अल्फाज बहुत सख्त। मैंने एक दफा ज़ैनविया मदरसे में पढ़ा था, वहां से मुझे एहसास हुआ मीर अनीस के अल्फाज बहुत सख्त। मगर मीर अनीस आला मकामा ने फरमाया है, बेचैन हो तुम दिल मेरा घबराता है बेटा, बेचैन हो तुम दिल मेरा घबराता है बेटा, मर जाओ कि अब सब्र में फर्क आता है बेटा। सैयद चौधरी के लिए वाक्य बहुत बड़ा सब्र है उस मुसीबत को सहना। जब हमने सह लिया समझ लिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पर एक और सवाल है, मजमे को देखकर मजलिस पढ़ना, क्या बेपर्दा खवातीन का मजमा ज्यादा है तो बेहिजाबी के लिए मजलिस नहीं पढ़े? पढ़ें जरूर, लेकिन सिर्फ बेहिजाबी पे फोकस नहीं करें। लोग शुरू में चिढ़ जाएंगे, जब चिढ़ जाएंगे आपकी नसीहत नहीं लेंगे। मजमे को चिढ़ाए नहीं, जब चिढ़ जाता है फिर वो आपसे अच्छी चीज भी नहीं लेगा। पहले उनके इश्क को थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, जब इश्क आ जाए फिर आप सोचें जनाब जैनब की तो कनीजें भी ऐसे नहीं फिरती थी। उस घर में तो कनीजों का पर्दा था, तो फिर हम जब चाहने वाले हैं तो भैया मुझे एक जुमला बहुत अच्छा लगा किसी आलिम का, खुरासान की मस्जिद के, जैनब का पर्दा छीनने वाला बकौल उस आलिम के, शिमर रिजोल्यूशन का, ए मेरी बहन तुम्हारा छीनने वाला कौन है? या तेहरान एयरपोर्ट पे मैंने लास्ट एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ देखा था, उसमें तुर्की की एक लड़की को दिखाया था, सिर्फ विक के जरिए कवर किया हुआ था, और नीचे एक ईरानी लड़की को दिखाया था, पीछे से भी बाहर निकले हुए आगे से भी, कहा वो अपने पर्दे को बचाने के लिए विक इस्तेमाल कर रही है। तुम्हारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम खुले बंदों आजाद फिर रही हो, तो बस आपका की छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे रिमाइंडर बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। अपनी सेहत और सलामती के लिए, अपनी तौफीकात में इजाफे के लिए, परवरदिगार इस मुहर्रम में हमें दोनों हाथों से, दोनों जहानों की नेमतों से मालामाल कर दे। परवरदिगार इस मुहर्रम में सैयद शोहदा भी हमसे राजी हो जाएं, और सैयद शोहदा के साथ हम कोई ऐसा अच्छा काम करें कि कल्ब नाज़रीन से देखकर कुबरा से हम सबके लिए दुआएं खैर निकले। ज़ाकिरीन दौरान मसाइब सर से चादर उतार देती है, इसके लिए क्या हुक्म है? ये सिर्फ एक कल्बी कैफियत है, मैं ऐसे कुछ नहीं कह सकती। जहाँ हिजाब डाउटफुल है वहाँ तो ऐसी नहीं उतारनी चाहिए, और मसाइब में अगर सर पर चादर होगी तो क्या मसाइब कबूल नहीं होंगे? सवाल है मेरा, जो भी ये काम करता है, मैं तो खैर कभी किया नहीं तो कुछ कह नहीं सकती, ये सब कल्बी कैफियत है, इनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल अपनी तौफीकात में इजाफे के लिए सरवात पढ़े मोहम्मद वाले।
يا صاحب الزمان.